शांति। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। शुरू करने से पहले हम सब ताली बजाएंगे, पहले मैं बजाऊंगा फिर आप बजाएंगे, ऐसे नहीं है जल्दीबाजी में निकल, ठीक है? हम मेरे पीछे पीछे ताली बजाएंगे। मैंने तो नहीं बजाई, आपने क्यों बजाई है? अच्छा, क्योंकि आपने सोचा कि शायद हाथ ऊपर गए अभी ताली बजने वाली है, तो ऐसा नहीं करना है। और करीब एक घंटे से कम समय तक मैं आपको इस विषय पर बताऊंगा, तो पूरी एकाग्रता से सुनना, डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। जितना आप ध्यान देंगे आपको ज्यादा फायदा होगा। कल भी कहा था कि उसको फील भी करो, ये बात तब आएगी कि जब इन चीजों को आप फील करेंगे। हाँ, आंखों में आंसू आए तो बोले रो लो, बहुत ही अच्छा है, उससे भी एकाग्रता बढ़ेगी। बहुत साल पहले एक कवि ग्रंथ लिख रहे थे, बहुत बड़ा ग्रंथ था, तो उनकी पत्नी ने सोचा कि ये ग्रंथ लिखने में उनकी एकाग्रता कितनी है चेक करना चाहिए। तो एक दिन खाने में नमक नहीं डाला, परंतु बिल्कुल उन्होंने कंप्लेंट नहीं की, खाना खाया, उठे और अपना लिखना शुरू कर दिए। अब दूसरा दिन, तीसरा दिन, बस खाने में नमक बंद कर दिया, लेकिन कोई कंप्लेंट नहीं की। फिर करीब चार मास के बाद एक दिन उन्होंने कंप्लेंट की कि अरे आज खाने में नमक नहीं है। तो उनकी पत्नी ने पूछा, तुम्हारा ग्रंथ पूरा हो गया? तो कहा, हाँ, आज सवेरे लिखने का पूरा हो गया मेरा। वैसे जो भी कार्य करते हैं उसमें इतनी एकाग्रता हो जाए, सुध-बुध खोले। दूसरा एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, आर्किमिडीज रेत में दरिया किनारे पे मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, उसी में लिख करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। हाँ, तो एक रोमन सोल्जर वहां आया, उसने कहा तू कौन है? तो बिल्कुल खो गए थे अपने मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम में, तो जवाब नहीं दिया। दूसरी बार पूछा तू कौन है? तो बस उसे में खो गए थे, जवाब नहीं दिया। फिर उसको एक लात मारी गई, ए तू कौन है? नहीं बोलेगा तो तेरा गला काट दूंगा। तो इतने खो गए थे अपने मैथमेटिक्स में, तो उसने कहा ठीक है भैया, गला काटना हो तो काट देना, परंतु पहले मुझे ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर देने दे। तो सचमुच उसको अपमान लगा और आर्किमिडीज का गला काट दिया उसने। तो इतना हमें एब्सॉर्ब होना है। कंसंट्रेशन थोड़ा मुश्किल शब्द लगता है, परंतु सहज बात है कि एब्सॉर्प्शन, जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में हमें पूरी तरह से खो जाना है। और उसके लिए सबसे पहली बात है कि जो सहज भी है, वर्तमान में जियो। जो कुछ भी करते हो सचमुच वर्तमान का, उसी क्षण का पूरा पूरा आनंद लो। आप में से भी कईयों ने वर्तमान के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, मैं आपको कुछ नई बातें बताना चाहता हूं। कहते हैं कि पास्ट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री बट प्रेजेंट इज अ गिफ्ट। ब्रह्मा कुमारी बहने आपको छोटी सी भी सौगात दे तो आप उनका शुक्रिया मानेंगे। तो ऐसे ही वर्तमान जैसा भी है, भूतकाल में क्या हुआ वो महत्वपूर्ण नहीं है, भविष्य में क्या होने वाला है भले करोड़ों रुपये मिलने वाले कोई फायदा नहीं, परंतु वर्तमान में छोटी सी भी चीज वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वर्तमान में पूरा जीना है। कहते हैं भूतकाल सपना है, भविष्य कल्पना है, पर वर्तमान अपना है। हाँ, बोलो बोलो, वर्तमान अपना है। वैसे पक्का करो कि वर्तमान जैसा भी है मेरा, ये रियल है सचमुच। ध्यान से सुनना, देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। कहते हैं पास्ट इज एन एक्सपीरियंस, प्रेजेंट इज एक्सपेरिमेंट एंड फ्यूचर इज एक्सपेक्टेशन। तो अब क्या करना है? जो भूतकाल का एक्सपीरियंस है उसको प्रेजेंट के एक्सपेरिमेंट में यूज करो ताकि फ्यूचर के एक्सपेक्टेशन जो है वह सच हो जाए। समझ गए? तो पूरा वर्तमान में ध्यान देना है। और एक बहुत ही अच्छी बात है, कहते हैं पास्ट इज ड्रीम, फ्यूचर इज अ विजन। अभी हमें क्या करना है? प्रेजेंट लिव्ड वेल विल मेक पास्ट द ड्रीम ऑफ हैप्पीनेस एंड फ्यूचर द विजन ऑफ होप। तो इन सभी बातों को याद करना, और जब जब भी हो वर्तमान में ही हमको पूरा जीना है, क्योंकि वर्तमान ही सत्य है। भूतकाल के बारे में हम सोच सोच के दुखी होते हैं, परंतु अभी वर्तमान में दुखी तो हो रहे हैं, और भविष्य के बारे में डरते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं, वो भी कहां करते हैं? वर्तमान में ही कर रहे हैं। इसलिए सचमुच वर्तमान ही सत्य है। कुछ एक आपको टेक्निक बताता हूं, आप कहेंगे कि भी कैसे वर्तमान में जिए। एक तो इन बातों को बार बार दोहराओ, फील करो कि सचमुच वर्तमान ही महत्वपूर्ण है, वर्तमान का मुझे पूरा पूरा आनंद लेना है। जैसे सवेरे उठते हो ना और खिड़की के बाहर देखो तो सोचो वाह कितना अच्छा सवेरा है ना, आज नया सवेरा आया, आज का मुझे पूरा आनंद लेना है ना, इसी में खो जाना है। देखो बच्चों में यह बात होती है, छोटा उनको एक फूल भी दे तो कितना अच्छा फूल है। तो ऐसे सवेरे से लेकर के सारा दिन हर क्षण का सोचो मुझे पूरा आनंद लेना है। फिर भी मन तो भागेगा, यह नहीं है कि भी मन वहीं टिकने वाला है। तो क्या करो कि जैसे ही विचार आए तुरंत पता चल जाए कि भी मन में अभी और कोई विचार आ रहा है, तुरंत कहो ओके, विचार दूसरा आ रहा है परंतु इस क्षण तो मैं यह कार्य करता हूं, इसी में मुझे पूरा खो जाने दो, वापस ले आओ। अगर ओके से काम नहीं चले तो उसको को स्टॉप, जैसे ही पता चले कि मन में और कोई विचार आया है तुरंत को स्टॉप, अभी तो मैं यह काम कर रहा हूं, इसी में मुझे पूरा पूरा खो जाने, भल बार बार करना पड़ेगा परंतु करो। हो सकता है इससे भी काम ना चले, तो कहते हैं एक टेक्निक है रबर बैंड टेक्निक। हाथ में एक रबर बैंड पहनो और जैसे लगे मन और कहीं गया खींचो और छोड़ दो, जब लगेगा ना ठाक तो अरे प्रेजेंट में जीना है ना, नहीं तो चमाट मारो स्टॉप, प्रेजेंट में आ जाओ। सचमुच आज आप करना दे तो छोटा सा होमवर्क है, 100 बार 200 बार आप करो, एक तो आपकी एकाग्रता तो बढ़ेगी और दूसरा आनंद आएगा। हाँ, जीवन का एक एक क्षण का आप पूरा आनंद ले सकेंगे। और एक काम करना है, मन जब भागता है तब उसको भी कहो ए चुप बैठ। मन के अंदर एक बंदर है वास्तव में, है ना, जो भागता रहता है, तो उसको कहो सचमुच चुप बैठ, अभी जो काम कर रहा हूं उसे मुझे पूरा पूरा आनंद लेने दे। तो और एक बात जिसको कहते हियर एंड नाउ, वर्तमान में जीना क्या है कि हियर राइट नाउ मैं क्या कर रहा हूं, तो बार बार ये याद दिलाओ। हाँ, हिंदी में कहे हाँ ये भी एक छोटा सा होमवर्क करना, आज और कल दिन में 200 बार अपने आप को यह प्रश्न पूछना। क्या पूछेंगे? मैं कहां हूं और क्या कर रहा हूं। अभी आप सब कहां है? ये हॉल में। क्या कर रहे हैं? सुन रहे। ये सब बार बार पूछो, चलते समय भी पूछो, मैं कहां हूं, रास्ते में हूं, क्या कर रहा हूं, चल रहा हूं, इसका पूरा आनंद लेने दो। अब करके देखना, फिर मुझे रिजल्ट भी बताना कितना आपको अच्छा लगेगा। और एक कार्य करना है जिसको कहा है कि भी ये सब कुछ अवेयरनेस के साथ करो। हाँ, कई लोग कहते हैं सब टेक्निक तो ठीक है लेकिन जब मालूम पड़े, तकलीफ क्या होती है? अभी आप मुझे सुन रहे हैं लेकिन यहां बैठे बैठे कोल्हापुर में चले जाएंगे, 2 मिनट के बाद मालूम पड़ेगा अरे रे मैं तो और कुछ सोच रहा था, तो 2 मिनट वेस्ट हो गई। तो अगर 1 सेकंड में पता चल जाए कि मन कहीं भागा तो बेस्ट है। और वो कब होगा कि जब सब कुछ जागृति के साथ करो, इसको कहते हैं कि अवेयरनेस के साथ सब कुछ करना है। अगर आप सब कुछ अवेयरनेस के साथ करेंगे तो बहुत बड़ा बुद्धिस्ट फिलॉसफी का बुद्ध बड़े रैशनल थे, वो सोचते थे जो अनुभव करे उसी को मानना है। उन्होंने सबसे जो महत्वपूर्ण बात अनुभव की कि अगर सब कुछ जागृति के साथ करे तो बहुत फायदा होता है। देखो जागृति के साथ हम कैसे कर सकते हैं, एक तो ये देख लेते हैं कि भी अवेयरनेस कितनी महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अवेयरनेस होगा तो आप आपके जो टॉक्सिक इमोशंस है उसको भी अनुभव कर सकेंगे, नेगेटिव विचारों को भी रियलाइज कर सकेंगे एंड आप एक ग्रेट हाइट्स पर लाइफ में पहुंच सकते हैं। देखिए अवेयरनेस कैसे करना है, हाथों को ऐसे रखिए, सभी रखिए, एकदम नजदीक रखो, एकदम रिलैक्स बैठना, एकदम रिलैक्स, हाथ को भी रिलैक्स रखना है और एकदम नजदीक रखना है, टच नहीं करना है, हाथों को स्पर्श नहीं करना है, एकदम नजदीक रखना है और हाथों के बीच में जो कुछ भी हो रहा है उसी को फील करो, जो भी संवेदनाएं हो रही है उसको फील करो। ना जी क्या फील हो रहा है हाथ के बीच में, कुछ हो रहा है, हाथ एक दूसरों की ओर खींचे जा रहे हैं, है ना, गर्मी लग रही है या जैसे कि कुछ वेव आ रहे हैं, या तो ठंडक का भी अनुभव हो सकता है। सब क्यों, क्योंकि वो आपका ऑरा सामने सामने आए। देखो ऐसे ऐसे करिए, हाँ करिए, अभी फील होता है कुछ और होगा, अभी भी नहीं हो रहा है तो देखो थोड़ा दूर करो नजदीक करो, कुछ फील हुआ ना, कुछ लोग पॉसिबल है कि कुछ भी आपको फील नहीं हुआ, है ना, क्यों, क्योंकि आजकल हम बहुत टेंशन में जीते हैं, ये अवेयरनेस बिल्कुल खत्म हो गई है, तो अभ्यास करेंगे तो होगा। देखो और एक सिंपल बात, हाथ को ऐसे करिए, पानी में आप हाथ डुबोएंगे तो कुछ फील होगा ना, तो ऐसे वातावरण में भी ऊर्जा है, सोचो कि उसमें आप हाथ को डुबो रहे हैं, फील हो रहा है, हाँ, इफ यू फील समथिंग दैट इज ऑल्सो योर अवेयरनेस। तो इससे सब कुछ जागृत चल भी रहे हो ना, जागृति के साथ चलो कि मुझे क्या फील हो रहा है सचमुच, हाथ को एकदम फ्री रख के ना, चाय भी पीनी है तो कैसे पीनी है पता है, जागृति के साथ पियो, चाय पीना भी एक कला है, आज तो समय नहीं, नहीं तो इस पर मैं सारा सेशन लेता हूं कि भी कैसे सब कुछ अवेयर, खाना कैसे खाना चाहिए। हमारी स्वास्थ्य शिविर होती है, हाँ, उसमें सामने बैठ के और बड़ा आपको आनंद आएगा, हाँ, अगर आप सीख लो तो। सिंपल सी बात बताता हूं कि चाय भी कैसे पीनी है, हाँ, थोड़ी सी चाय मुंह में लो, मुंह में ही रखनी है, हाँ, स्वॉलो करेंगे गले के नीचे गई कोई टेस्ट नहीं, टेस्ट तो मुंह में ही है, क्या मुंह में 10-15 सेकेंड रखो, इसका तरीके से नीचे देखो तो सॉलो नहीं करेंगे, तो 10-15 सेकंड के बाद लगे अच्छा सा टेस्ट मिल गया, फिर धीरे से सॉलो करो, उसके बाद भी रुको कि सारे बॉडी में क्या कंपन हो रहे हैं, क्या फीलिंग हो रही है, उसका पूरा आनंद लो, फिर और एक मिनट के बाद दूसरी सीप लो। किसने कहा चाय ठंडी हो जाएगी तो ज्यादा चाय पीने की जरूरत नहीं, पाव कप भी काफी है, 1/4 ऑफ कप भी आप देखो ऐसे चाय पियो, आपको पूरा उसका आनंद मिलेगा। हाँ, खाने के लिए भी कहते हैं कि खाना पियो और पानी खाओ, मतलब क्या कि खाना चबा चबा के पानी कर दो और उस पानी को पियो, और पानी को इतना धीरे धीरे पियो जैसे कि खाना खा रहे हो, कि पेट में जाने से पहले ही खून में चला जाए, पेट में अगर पानी गया तो वो जो एंजाइम्स है उसको कम कर देगा। हमने एक सारा एक्सरसाइज का प्रोग्राम डेवलप किया है जिसको कहते हैं अवेयरनेस एक्सरसाइजेस, हाँ, उसमें 29 क्रियाएं हैं, अलग अलग क्रियाएं जो सारे शरीर को उससे व्यायाम मिलता है। आज देखो आपको 3-4 कराता हूं कि जिससे कॉन्सेंट्रेशन बढ़े, अवेयरनेस बढ़े, सबको करनी है, हाँ या ना, बोलो तो सही, देखो खड़े हो जाएंगे सब, देखिए एक जल्दी जल्दी है, ज्यादा एक्सरसाइज का लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है अवेयरनेस का। फिर आप अपने आप भी कर देखो, इसको कहते पहला अभ्यास कि हाथों को ऐसे एकदम नजदीक रखना है, फिर सोचना है कि उसमें से एक ऊर्जा का बलून बन रहा है, अर्ध गोलाकार बलून बन रहा है, बिना बलून छोटा हो रहा है, सचमुच अर्ध गोलाकार बने। जब छोटा होता है तो सोचो कि ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर रही है, हाँ थोड़े समय के बाद आप करेंगे तो सचमुच होगा। और फिर एक्सरसाइज का फायदा हो इसलिए ऐसे भी किया, बाजू वाले को लात नहीं मारना। तो यह है पहला अभ्यास। दूसरा कहते बॉल से खेलना, जो छोटे थे बॉल से खेलते थे ना, सोचो कि ऊर्जा का एक बॉल है, उससे आप खेल रहे हैं सचमुच, है ना। वो बॉल जमीन को लगता है, आपके हाथों को लगता है, हाथों को लगता है तो करंट लग रहा है जैसे कि, फिर दूसरे पैर से भी सचमुच, फिर दोनों से भी कर सकते, परंतु वो फीलिंग एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है कि इसमें पूरा हमें खो जाना है। और एक क्रिया है जिसको कहा चक्की चलाना। देखो पहले के जमाने में एक्सरसाइज की जरूरत नहीं थी क्योंकि सवेरे उठ के लोग चक्की चलाते थे, है ना। तो हाथों को ऐसे रखिए और ऐसे सोचना है सचमुच चक्की चला रहे हैं, अवेयरनेस को फील करिए एकदम जागृति के से, वो फीलिंग होनी चाहिए। और साथ साथ पॉजिटिव थॉट भी करो कि सृष्टि भी एक चक्र है, उसमें मैं हीरो एक्टर हूं। आज बताया ना उषाबेन ने कि सृष्टि एक चक्र के समान है। और एक है जिसको कहा है नाव चलाना, हाथ को ऐसे एकदम रिलैक्स स्टेज में, और फिर जैसे नाव चलाते हैं ऐसे फिर से यहां आना है, तो अवेयरनेस मेंटेन होगी। वो सोचना है जीवन भी एक नाव है, जीवन रूपी नैया प्रभु के हवाले कर दी है, प्रभु मेरी नैया को जरूर पार ले जाएंगे। और एक अच्छा है फरिश्ता बनना। देखो हाथों को ऐसे रखिए एकदम लूज, हाँ जैसे कि फरिश्ते हैं, फास्ट फास्ट करिए, हाँ एकदम फरिश्ते, फरिश्ते की तरह मैं उड़ रहा हूं, लेकिन जागृति के साथ करना है। एक जो लोगों को बहुत अच्छा लगता है कहते नकारात्मक कंपनों को अलविदा, सोचो बुरे काले ब्राउन रंग के वाइब्रेशन सभी दूर जा रहे, बाजू वाले को नहीं देना। सारे नेगेटिव जा रहे। और जो सबसे मुझे अच्छा लगता है वह है मोर की तरह उड़ना। देखो हाथों को ऐसे रख, अवेयरनेस से करना है। आह फिर सोचना है वाह मेरा पार्ट वाह, वाह मेरा पार्ट वाह, और अंतिम है वाह भगवान वाह। हाँ अवेयरनेस से करो, आप पहले बैठिए, थैंक यू, हो गया ना वाह। ये अभ्यास करो, देखो आनंद भी अभी भी मजा आया ना, मजा भी आएगा और कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, हाँ डबल फायदा होगा आपको। अच्छा और एक, अभी कंसंट्रेशन बढ़ाना है ना, ये अभी प्रैक्टिकल ना, सीरियस टॉक। सीरियस बात क्या है जो आमतौर पर भी सिखाया जाता है, जिसको मैं कहता हूं मेंटल फाइलिंग सिस्टम। जैसे ऑफिस में फाइल्स होती है ना, देखो एक ऑर्डिनरी क्लर्क भी एक समय पर एक फाइल को ही खोलेगा, कोई दो चार फाइल को खोल के बैठे तो कहेंगे क्या बुद्धू है, परंतु हम क्या करते हैं मेंटली दो चार फाइल खोलते हैं। हाँ अभी आप मुझे सुन रहे हैं, साथ साथ में अपने घर के बारे में भी सोच रहे हैं, तो दो तीन फाइल साथ में कभी भी नहीं खोलनी। कंप्यूटर में भी फाइल्स बनाते हो ना, तो ऐसे ही सोचो कि एक समय पर एक ही फाइल खोलनी, फिर भी विचार आएगा ये कैसे करेंगे। ये तो शुरुआत ही, सवेरे जब उठो ना, उठते ही बस अपने आप को ये विचार दो, एक तो सवेरे उठते ही भगवान को कहो थैंक यू, आज आपने मुझे इतना सवेरे जगा दिया, बहुत अच्छा किया। और फिर ये सोचो आप सारा दिन एक समय पर एक ही फाइल खोलूंगा, जो भी काम कर रहा हूं उसी में पूरा खो जाऊंगा, उसी का पूरा पूरा आनंद लूंगा मैं, उसी को जस्टिफाई करूंगा। और सचमुच शुरुआत करिए, हाँ ब्रश कर रहे हैं, ब्रश करने का पूरा आनंद लो, स्नान कर रहे हैं बस उसी में पूरा खो जाओ, हर कार्य में। ऑफिस में भी गए सोचो, एक समय पर एक ही फाइल मेंटली खोलनी, फिर भी विचार आएगा तो क्या करना पड़ेगा, अवेयरनेस से तुरंत उसको वहीं पर ले आओ कि अभी तो मैं ये कर रहा हूं, इसी में मुझे पूरा ध्यान देना है। तो बार बार भी भले करो, मैं बताऊंगा कि भी मन को भी कैसे समझाना है, क्योंकि डिस्टर्बेंस कहां होता है, मन और बुद्धि और संस्कार आपको डिस्टर्ब करते हैं, उसको भी कैसे एकाग्र करना है इसकी भी हम चर्चा करेंगे। परंतु बार बार आप ये सोचो, अगर दूसरा विचार आए तो भी कहो ठीक है कि भी विचार आया, इसके बारे में मैं आगे चल के ये काम करूंगा, अभी तो मैं इसको एंजॉय कर रहा हूं। दूसरा विचार आए तो क्या करो, तुरंत लिख लो। आज कई लोग क्यों सोचने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं भूल जाऊंगा। एक हमारे बड़े सीनियर डॉक्टर थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, लेकिन वो आपके साथ बात कर रहे हैं, उसको दूसरा खुद याद आया ना, तो फोन पकड़ के फोन साहब क्यों कर रहे, कहते मैं भूल जाऊंगा वो काम, तुम ठहरो। परंतु ये गलत है, बोले छोटा आदमी आपको कुछ बोलेगा नहीं, परंतु उस समय आपको लगता है कि भूल जाऊंगा, तो भले एक छोटी सी डायरी रखो, तुरंत लिखो ये काम करना है, फिर जब फ्री हो तब सोचो कि अभी यह काम करना, लेकिन उस समय पूरा उसी में खो जाना। बस थोड़ी सी अभ्यास की बात है, मेंटल फाइलिंग सिस्टम करो, बहुत अच्छी तरह से होगा। आप सबने देखा है, यहां तो फैन नहीं है लेकिन पंखे को घूमते देखा है ना सबने, कोई है जिसने नहीं देखा, सबने देखा है ना, तो क्या देखा, फैन को घूमता देखते हो, कोई विशेष बात देखी, हाँ कुछ देखा, फैन घूमता है तब वो घूमता है, अच्छा नहीं, कुछ विशेष बात बताओ जो किसको मालूम है, हाँ एंटी क्लॉक, अच्छा देखो जब, हाँ क्या क्या, अच्छा देखो, हाँ देखता नहीं, अच्छा देखो फैन को घूमता क्या देखा, हाँ पूरा सर्कल दिखता है, देखो इंपॉर्टेंट बात है, टाइम कम है हमारे पास, ऐसे दिखता है, देखो बहुत अच्छी अच्छी बातें आई ना, क्या एक बहुत नई बात क्या है पता है, कि वो पंखे घूमते, उसकी जो लकड़ी है ना वो घूमती नहीं है, जो डंडा है ना पंखे का डंडा घूमता नहीं है, देखा किसी ने, तो बस ऐसा ही करना है, भले परिस्थितियां घूम जाए, जीवन भी घूम जाए भले, परंतु मन घूमना नहीं चाहिए, हाँ बुद्धि स्थिर रहे, वो डंडे की तरह, पंखे की धुरी की तरह हमारी बुद्धि एकदम स्थिर रहे तो कभी भी समस्या नहीं आएगी। वास्तव में अभी जो एकाग्रता है, हाँ मुख्य बात को लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि मन बुद्धि और संस्कार को एकाग्र करना है तो एकाग्रता आ जाएगी। एक तो कहते हैं कि मन में जबरदस्त शक्ति है, मन में इतनी शक्ति है, परंतु जबरदस्त शक्ति कब आएगी, कि जो मन का आदर करना सीखते हैं, जो मन की संभाल करना सीखते हैं, वही उस जबरदस्त शक्ति को अनुभव कर सकते हैं। जो हमारी चेतना है, कॉन्शियसनेस को समझना हो तो हम कई लेवल्स पर उसको समझ सकते हैं, 4 लेवल्स पर हम कॉन्शियसनेस को समझ सकते हैं। एक तो है जिसको कहते हैं कॉन्शियस फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस, कि हमारी चेतना की एक ऐसी छोटी सी फील्ड है कि जिसके बारे में आप जागृत है, आपको कहे कि भी एक सप्ताह तक जो भी आपको अपने जीवन में बचपन से अब तक हुआ वो सारा याद करो, तो हार्डली आपको 8-10% से ज्यादा याद नहीं आएगा, वह है हमारी कॉन्शियस फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस। सेकेंड है सबकॉन्शियस, या तो फ्रॉइड ने इसको कहा प्री कॉन्शियस, कि जो थोड़े डीप, ये कभी कभी याद आता है, कई बातें आपको याद नहीं आती है, परंतु गाड़ी चला रहे हैं अचानक याद आ जाता है, तो वह है सबकॉन्शियस या प्री कॉन्शियस। उससे भी डीप है अनकॉन्शियस, कि जो कभी याद नहीं आता है, पूर्व जन्म की भी बातें वह अनकॉन्शियस में समाई हुई, वो आज आपको कंट्रोल कर रही है। और अंतिम है सुप्रा कॉन्शियस। सुप्रा कॉन्शियस में जबरदस्त शक्ति है। सुप्रा कॉन्शियस सचमुच कमाल कर सकता है। सुप्रा कॉन्शियस एक फरिश्ते जैसा है, परंतु यह फरिश्ता सोया हुआ है ना। अब इससे काम कराना हो तो क्या करना पड़ेगा? इसको जगाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे मन बुद्धि और संस्कारों को हम एकाग्र करें। जो मन हमारा है वह जंगली घोड़े जैसा है ना, मन शरारती बच्चे जैसा है ना, उसको फोर्स से आप कंट्रोल नहीं कर सकते। परंतु ये जंगली घोड़े को आपको कंट्रोल करना है तो प्यार से कंट्रोल कर सकते। बच्चे को भी आप प्यार से समझाओ, बच्चा मान जाएगा। देखो सवेरे सवेरे आप ऑफिस जा रहे, बच्चा जीत करता है कि नहीं नहीं पापा मुझे लेके जाओ ऑफिस में, जोर से रो रहा है, तो आप उसको एक थप्पड़ लगाएंगे तो और रोएगा। परंतु उससे अच्छा उसको प्यार से समझाओ कि बेटे मैं वापस आऊंगा ना तो तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा खिलौना लेके आऊंगा जो तुमको बहुत पसंद है। तो बच्चा एकदम शांति से प्यार से आपको जाने देगा। तो मन का भी ऐसा ही है कि मन को प्यार से समझाओ, अपने नाम से कहो, हे मन देख तू इतना शांत हो जा, हे मन जो कर रहा है उसी में पूरा एकाग्र हो जा, तो जो चाहिए वह सब कुछ तुझे मिल जाएगा। हाँ प्रमोशन चाहिए और संपत्ति के साधन चाहिए, सब कुछ मिलेगा, तू जो कर रहा है बस उसी में पूरी तरह से एकाग्र हो जाए तो मन उसको मानेगा। तो इसे प्यार से मन को समझाना है। फिर दूसरी है बुद्धि। देखो बुद्धि तर्क से समझती है, सिर्फ प्यार से बुद्धि नहीं समझती है। कोई भी परिवर्तन लाना है ना तर्क से अपने आप को समझाओ। एक डॉक्टर थे, करीब 40 साल की उनकी आयु है, और उनके पिता से उनको बहुत अटैचमेंट था। तो उनके पिता की मृत्यु हो गई तो बहन बहुत रोती थी, कई दिनों तक रोती रहती थी। हाँ एक दिन गार्डन में बैठी थी, गार्डन में बैठे बैठे भी आंसू आ रहे थे, तो अचानक उनको विचार आया कि अरे कहते हैं कि जिनकी मृत्यु हो गई है ना वो फरिश्ते बनते हैं, कभी मेरे पिता यहां से गुजरे फरिश्ते के रूप में और मुझे देख ले कि मेरे आंखों में तो आंसू आए तो उनको तो कितना दुख होगा। तो तुरंत साफ कर दिया कि नहीं मुझे नहीं रोना चाहिए। कहा दूसरे दिन से मैंने रोना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि तर्क मिल गया। अगर रोने से पिता को अगर दुख होने वाला है तो मुझे रोना नहीं चाहिए। तो इसे जो का जहां भी आपको मन को लगाना है तर्क से अपने आप को समझा दो। बुद्धि को तर्क से समझाएंगे, बुद्धि तुरंत उसी चीज को पसंद करेगी, है ना, उसी दिशा में बुद्धि जाएगी। और नेगेटिव बात भी, हाँ पता नहीं कि यह माहौल ठीक है या नहीं यह बात बताने का, लेकिन फिर भी आप सभी अनुभवी है। हाँ किसी ने कहा कि उसकी याद में मैं इतना रोया कि बाल्टी भर गई, परंतु वो आई और स्नान करके चली गई। तो ऐसे व्यक्ति के लिए मन क्यों हम लगाए, बुद्धि क्यों ऐसे व्यक्ति के लगाए। हाँ जब भी फ्रेंडशिप में कुछ प्रॉब्लम हो, डिस्टर्बेंस हो, किसी से रिलेशन ब्रेक हो, ये पक्का सोचो कि अगर उस व्यक्ति को कंसर्न नहीं है तो मुझे उसके बारे में क्यों ध्यान रखना चाहिए। हाँ मैं भी बिल्कुल केयर फ्री हो जाऊं। तो ऐसे एक्चुअली हमें एक अपनी स्टेज बनानी है। और अल्टीमेट बात है कि उस सुप्रा कॉन्शियस को जागृत, अगर अल्टीमेट 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 कॉन्सेंट्रेशन आप चाहते हैं कि ना टोटल जो कर रहे उसमें खो जाए, सुदबुद आपकी खो जाए, वो कब होगा? अगर आप सुप्रा कॉन्शियस को जगा देंगे। और सुप्रा कॉन्शियस कब जागता है? ऐसे ही देखो, आप कितने भी विचार करो सुप्रा कॉन्शियस नहीं जागता है, रिलैक्सेशन में भी नहीं जागता है। परंतु जब आप बिल्कुल अपनी सुदबुद को खो बैठते हैं, 100% जब आप विचारों से परे चले जाते हैं, तब सुप्रा कॉन्शियस तक पहुंचते हैं। उस समय तो कोई विचार नहीं, उस स्टेज में एक भी संकल्प नहीं है, परंतु उससे जब आप वापस आ रहे होते हैं तब जो पहला संकल्प आपको आता है सुप्रा कॉन्शियस कैच कर लेता है और उसी को वह सत्य बना देता है। देखिए स्वामी विवेकानंद भी जब शिकागो में खड़े हुए बोलने के लिए और जब उन्होंने कहा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो सारे लोग खड़े होकर उनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया ना, तालियां पूरी 5 मिनट तक बजती रही ना, किसी को भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स इससे पहले नहीं मिला था। बड़े प्रख्यात साधु संतों ने भी प्रवचन दिए थे। क्यों? क्योंकि मैं मनोविज्ञान के रूप से सोचता हूं कि उनका सुप्रा कॉन्शियस जाग गया था। जब भारत से भी जा रहे थे तब थोड़े ही पैसे थे, लेकिन यही था कि मैं क्यों जा रहा हूं, क्योंकि मुझे सिद्ध करना है कि मेरी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है। जब अमेरिका भी पहुंचे तो निमंत्रण गुम हो गया, तो बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, रेलवे स्टेशन पर काफी समय बिताना पड़ा, लेकिन फिर भी यही विचार था कि मैं यहां क्यों आया हूं, क्योंकि मुझे यह सिद्ध करना है कि मेरी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए मैं सोचता हूं कि एक ऐसी क्षण आई होगी कि जब उन्होंने अपनी सारी सुध-बुध खो दी होगी और जब उससे वापस आ रहे होंगे तब यही विचार आया हो, मैं यहां क्यों आया हूं, यह सिद्ध करने के लिए। तो सब चीजें ऑटोमेटिक हो ना। विवेकानंद इतने इंटेलिजेंट नहीं थे, वहां पहुंचने के बाद सुपर इंटेलिजेंट बन गए। हाँ, कई तरीके से और धर्म वालों ने उन्हें परेशान करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हर बार विजयी हुए। तो ऐसे हमें भी पावरफुल आपको कॉन्सेंट्रेशन करना है, सुप्रा कॉन्शियस के जगा दो। हम एक मेडिटेशन भी आज करेंगे, अगर आपने अच्छे से सब करेंगे सचमुच आप सीख जाएंगे कि कैसे सुप्रा कॉन्शियस को जगा देना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने का बड़ा सरल उपाय है। कई चीजें आपको साइकोलॉजिकल लगेगी, मुश्किल भी लगेगी, लेकिन सबसे सरल चीज है कि सांस की गति में खो जाओ। एक प्राणायाम हमने डेवलप किया है, जैसे एक्सरसाइज कही ना, ऐसे 8 प्रकार के प्राणायाम तैयार किए। उसमें एक है जिसको कहते हैं स्लो ब्रीदिंग। कोई भी प्राणायाम सीखने से पहले सबसे पहले यह सीखना चाहिए कि सही सांस लेना। आप सबको सीखना है सही सांस लेना, हाँ या ना? सब खड़े हो जाएंगे एक बार फिर से। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने अगर गलत सांस लिया कितना भी 2 घंटा वाले प्राणायाम कर लो कोई फायदा नहीं, उल्टा नुकसान होगा फायदे के बदले। लो अपना राइट हाथ पेट पे रखिए और 3-4 गहरे सांस लो और ये चेक करो कि आप सांस लेते हैं तो पेट का क्या होता है, पेट अंदर जाता है या बाहर आता है? चेक किया? हाँ, कौन कौन समझते हैं कि आप सांस लेते हैं तो पेट अंदर जाता है, हाथ उठाओ। आप सब गलत सांस ले रहे हैं। हाँ, पेट सचमुच बाहर आना चाहिए। क्यों ना? देखो लॉजिक को समझो। कई बार टीवी में भी गलत दिखाते हैं। हाँ, सच क्या है कि छाती और पेट के बीच में एक बहुत बड़ा मांसपेशियों का पर्दा है जिसको डायफ्राम कहते हैं, उदर पटल। तो अगर गहरा सांस लेना है डायफ्राम को नीचे दबाना पड़ेगा, उसको नीचे दबाएंगे तो पेट का क्या होगा, पेट आगे आएगा, ठीक है ना? अभी भी विश्वास नहीं आता हो तो छोटे से बच्चे को देखो, जो बच्चा सांस लेता है वह सही सांस है। अभी आपका गलत है तो ठीक कैसे करना, बड़ा सिंपल, देखो अभी 1 सेकंड में हो जाएगा। हाँ, फिर से भले हाथ रखो और 3-4 बार सांस को बाहर निकालो, फूंको, जैसे कपाल भाती में करते हो ना, फोर्स से सांस को बाहर निकालो, पेट को अंदर खींचो और फिर सांस लो। देखो ऐसे होगा, हुआ सबका? करो करो, फिर सांस लो, सिर्फ छोड़ना, अभी पूरा गहरा सांस लो। नहीं हो रहा है? हो गया ना, सबका हुआ, हाथ उठाओ किसका किसका हुआ। बहुत अच्छा, देखो ताली तो बजा दो, इतनों ने सही प्रैक्टिस की थी। बल बैठिए, अभ्यास करना पड़ेगा, अभी भी नहीं होना तो लेट के करना चाहिए। हो सकता है भी कोई अभी भी उल्टा सांस ले रहे हैं, क्या होना है, सांस लेंगे तो पेट बाहर आएगा, सांस बाहर आएगा तो पेट अंदर जाएगा। अभी भी अगर आपको दिक्कत होती हो ना तो क्या करो, लेट के करो, लेट जाना है, पैरों को मोड़ लेना है और फिर करो तो सहज आपको सफलता मिलेगी। एक बार सही सांस लेना सीख लिया फिर हम कोई प्राणायाम भी कर सकते हैं। हाँ, देखो आज आपको सिर्फ दो बताता हूं। एक है जिसको कहा संपूर्ण सांस, है ना, कंप्लीट ब्रेथ। आज हम क्या करें पता, 50% ही सांस ले रहे, ऑक्सीजन यहां तक ही जा रहा है, यहां तक जाए तो 100% होगा। और इसमें क्या करते हैं, जैसे आप बैठे कमर को सीधी रख के बैठना है, मैं खड़े होकर के कर रहा हूं, पहले सांस को फोर्स से छोड़ना है, पेट को अंदर खींचना है और फिर धीरे से सांस लेना है, साथ साथ में हाथ को भी ऊपर उठाना कि ऊपर ऊपर तक भरना है सांस को, है ना, और फिर रोकना है, जितना समय रोक सके आराम से रोकते हैं। जब लगे अभी संभव नहीं है तो सांस को छोड़ते और साथ में ओम की ध्वनि करते हैं। आप एक बार देख लो पहले, फिर हम एक बार करेंगे। हाँ, देखो ऐसे होगा, छोटा है अम लंबा है। अच्छा, एक बार करेंगे सभी, हमें स्टार्ट कहूं तो सांस को छोड़ना है। हाँ, ओके, हाँ, स्टार्ट, पेट को अंदर खींचिए, थोड़ा अंदर खींचिए, सांस को बाहर आने दीजिए। अब धीरे से पेट को ढीला छोड़िए, पेट को ढीला छोड़िए और सांस भरिए, भरिए सांस को भरिए, जितना गहरा, नीचे से ऊपर 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 तक आ रहा, एकदम ऊपर तक सांस भर गया, जितना हो सके रोकिए। अब सांस को छोड़ेंगे, ओ शाम शाम, ऐसे थोड़ी देर करो, देखो ऑटोमेटिक आपका आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी और बहुत सारे प्राणायाम के भी फायदे हैं। और जो एक कहा जल्दी से बताता हूं, जिसको कहा स्लो ब्रीदिंग, क्या करना है, नॉर्मल सांस लेना है, गहरा नहीं लेना, लेकिन जितना हो सके धीरे 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 धीरे, एकदम धीरे धीरे धीरे, एकदम जागृति के साथ छोड़ो तो भी एकदम धीरे 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 छोड़ना है। एक समय पर आपकी एक ही नासिका चलती है, समझो आपकी राइट चल रही है तो यहां पर एक छोटी सी रुई का टुकड़ा रख दो, और रुई हिलनी ज्यादा नहीं चाहिए, गिरनी तो नहीं चाहिए, इतना धीरे 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 लेना। और उसी में अगर आप खो गए ऐसा 5-7 मिनट भी करो, देखो एकदम एकाग्रता आ जाएगी, एकदम अवेयरनेस है आपकी, वो अवेयरनेस जाग जाए। और कई बार हम थक जाते हैं, एकाग्रता क्यों डिस्टर्ब होती है, क्योंकि ऑफिस में लंच ब्रेक के बाद 3 बजे आप एकदम थक गए, अभी तो कहीं मन लग ही नहीं रहा है, शरीर भी टूट रहा है, तो क्या करना चाहिए, ध्यान भी करो, दूसरा एक क्विक रिलैक्सेशन, एकदम देखो सिंपल है, मुंह को ऐसे खोलिए, रिलैक्स होके मुंह को खोल के बैठिए और बस उसी में ध्यान दीजिए कि लोअर जॉ में क्या फीलिंग्स हो रही है। अगर ऐसा बैठेंगे ना तो बस आधी मिनट में आपको अच्छा लगने लगेगा, 1-2 मिनट में आप रिलैक्स, 2 मिनट में सो भी जाएंगे, जिनको नींद नहीं आती है ना उनके लिए भी एक बहुत अच्छी चीज है, तुरंत आपको लोअर जॉ रिलैक्स होने लगेगा, फिर सारी बॉडी को भी आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। और अंत में अभी देखो दो काम करने, बहुत अच्छा, क्योंकि एकाग्रता सब टेक्निक से नहीं आती, मन अगर आपका हल्का हो गया, मन में शांति है, मन में प्यार है, आनंद है, तो ऑटोमेटिक एकाग्रता आ जाएगी। तो ये दो काम होमवर्क के रूप में जरूर करना, हाँ अभी भी करेंगे तो बहुत अच्छा है। एक तो है कि जिसने भी आपको जीवन में थोड़ा भी किसी ने अगर दुख दिया है तो उसको माफ कर दो, कहते तो इम्पॉसिबल है, उसने मुझे इतना दुख दिया है, वो चुड़ैल को मैं कभी माफ नहीं कर सकती हूं, तो भी सचमुच देखो, हाँ बदला लेंगे अगर आप तो बदला लेने का आनंद 1-2 दिन टिकेगा, तो परंतु माफ करने का सम्मान सारे जीवन भर रहेगा। माफ करने का गौरव भी जीवन भर टिकेगा। तो इसलिए जरूर कितना भी आपको लगे, क्योंकि उससे आपको ही फायदा है, माफ नहीं करते हैं तो उस व्यक्ति को कोई हानि नहीं होनी है। इसलिए प्लीज ये जरूर करना, सोचना हे भगवान इनको माफ कर दो। देखो क्राइस्ट ने माफ कर दिया तो परमात्मा तुल्य लोग उसको मानने लगे, तो इससे सचमुच सब जिसने भी दुख दिया है उनको माफ कर दो। और भी दूसरा काम इससे भी मुश्किल है, वह है माफी मांग लो। हाँ, कोई भी आपसे नाराज है तो जरूर उसको जाके कहो कि प्लीज भैया आप मेरे से नाराज हो, आपने मुझे मैंने आपको दुख दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। और भावना से कहो। हाँ, माफी किससे मांगनी है पता है? 90% वो आपके घर वाले ही है। बच्चों से माफी मांगनी है, पति पत्नी से माफी मांगनी है, माता पिता से माफी मांगनी है, घर वाले ही सारे हैं। तो इसलिए तुरंत काम करना, यहां से फ्री हो जाओ ना 12 बजे, तो मोबाइल है तो मोबाइल निकाल के फोन करना कि देखो मैंने आपको तकलीफ दी थी, यहां मैं आया हूं, कॉन्फ्रेंस में हमको ये बताया, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं तो एसटीडी बूथ पे जाके भी करना, देखना क्या जबरदस्त आपको परिणाम मिलेगा। ऐसे नहीं मुझे माफ कर दो, हाँ भावना से करो, सबसे अच्छा है गले मिलो, हाँ रो के माफी मांगो। देखो इतना जीवन में मतलब वो जो सच्चा आनंद है, जो सुकून है जीवन का, वह प्राप्त होगा और कोई चीज की और आवश्यकता नहीं रहेगी। तो अच्छा, और डिटेल में नहीं जाता हूं, परंतु आपको अभ्यास करना है ना, और देखो पावरफुल अभ्यास करते हैं। एकदम अच्छा योग करना है या ऑर्डिनरी करना है? कल से भी अच्छा करना है? अच्छा, हाँ प्रश्न वाले बाद में, क्योंकि ना 11। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ सब कर, जो मैंने बताई हो तो सब कर सकते हैं। नहीं नहीं, जो कोई मुश्किल है, जैसे अभी मैंने दिखाई वो बड़ी सिंपल है। प्राणायाम में भी कुछ प्राणायाम बड़े मुश्किल है कि जो हार्ट पेशेंट को नहीं करने, परंतु जो मैंने दिखाई वो अस्थमेटिक डायबिटिक हार्ट के पेशेंट सब, ये बड़े सिंपल है, उल्टा उसको फायदा करेगा। हार्ट के पेशेंट अगर ये संपूर्ण सांस करे तो उसको बहुत फायदा करेगा। अच्छा, मैं एक बार पहले तो हम ध्यान कर लेते, फिर आपके प्रश्न हो तो बाद में आप मुझे पूछना। हाँ, पहला पेट फूलेगा। चलो पहले छाती फूले तो भी ठीक है, कोई हर्जा नहीं, लेकिन अंत में पेट जरूर फूलना चाहिए, पेट अंदर नहीं जाना चाहिए। हाँ ठीक ठीक है, ठीक ठीक, हाँ तो ठीक है, चलेगा, करेक्ट। लेकिन नहीं नहीं, पहले पहले छाती फूले लेकिन पेट अंदर नहीं जाना चाहिए। कईयों का ऐसा होता है, देखो तो ये गलत है, अगर पेट अंदर गया तो, हाँ बस पेट बाहर आया तो भले बाद में फूले तो भी कोई बात नहीं। वो थोरैको एब्डोमिनल है, थोरैको एब्डोमिनल भी ठीक है, एब्डोमिनो थोरेसिक भी ठीक है, ना दोनों ठीक है, सिर्फ पेट अंदर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ठीक है ओके। अच्छा अभी ध्यान करना, एकदम पावरफुल ध्यान सबको करना है। हाँ एकदम पावर, कोई डरेगा नहीं? डरेगे ना? अभी कोई यहां से उठेगा नहीं, हाँ कोई भी उठेगा तो मैं समझूंगा डर गए, किसको उठना है तो अभी उठ जाओ, तब तक नहीं उठेंगे कोई। अच्छा ये ध्यान क्या है? एक बहुत अच्छी नॉवेल है जिसकी कहानी ऐसे शुरू होती है कि साइंटिस्टों को पता चल जाता है, पावरफुल टेलीस्कोप से देखते हैं कि छोटा सा ग्रह पृथ्वी के नजदीक आ रहा है और 60 दिन के बाद वो पृथ्वी को टक्कर मारेगा और सारी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। तो पहले तो जब ये न्यूज आते टीवी में लोग मानते ही नहीं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तो गलत न्यूज है, लेकिन 24 घंटा यही न्यूज आता रहता है तो लोग मान, पहले तो डर जाते एकदम, फिर लोगों में एक परिवर्तन आ जाता है, लोग सुधर जाते, जो चोरी झगड़ा सब खत्म। थोड़े समय में तो ऐसी स्थिति आती है कि लोग घरों को ताला भी नहीं मारते, ऐसे ही चले जाते हैं, पता है कोई चोरी होने वाली नहीं। तो इसी बात को मैंने मेडिटेशन के साथ जोड़ा है कि ये आपको पक्का पता चल गया है। हाँ उषा बेन ने आपको बता दिया है कि 60 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाने वाली है, तो आप ये 60 दिन कैसे बिताएंगे, मैं आपको गाइड करूंगा, मेरे साथ साथ आप सचमुच सोचना कि अगर जीने के 60 ही दिन हैं तो आप कैसे जीवन व्यतीत करेंगे। और सचमुच मैं कहूं ऐसे आप करना, बहुत अच्छा लगेगा। फिर सचमुच आत्मा निकल जाएगी, और ये कल्पना नहीं है, सत्य है, जिसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहा गया है, कि एक टनल से जैसे आप बहुत हाई स्पीड से कहीं जा रहे हैं और परम धाम में परमात्मा को मिलते हैं। फिर क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, और ये सचमुच आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में हजारों लोगों ने एक जैसे अनुभव किए हैं ना। तो सब करेंगे अभ्यास, ओके, कमर को सीधी रख करके बैठिए। बहुत अच्छा अभ्यास करना है। अभी फिर से देखो वो एकाग्रता वाली ताली, कल 1 2 3 किया था ना, आज करेंगे 1 2 3 4 स्टॉप, ठीक है, मेरे साथ करना। ओके, ओ अरे 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 अरे, मैंने तो नहीं किया, एकाग्रता नहीं है, ठीक है, अच्छा ओके। कमर को सीधी रखिए, दोनों पैरों को जमीन पे थोड़े अंतर पे रखना है, रिलैक्स स्टेज में, हाथों को भी ऐसे मोड़ देना, एकदम कंफर्टेबल स्टेज में, एकदम नेचुरल स्थिति में बैठे हैं। हाथों की उंगलियों में जो भी संवेदनाएं हो रही है उसी में खो जाना है। हाथों की उंगलियों में जो भी फीलिंग्स हो रही है बस उसी में एब्सॉर्ब हो जाना है। जैसे ही उसी सेंसेशन में खो जाते हैं, विचारों की गति भी शांत हो रही है, सारा शरीर रिलैक्स हो रहा है। एकदम सारा शरीर रिलैक्स हो रहा है। अब आप मन को मोड़ सकते हैं, सचमुच आपको 100% पता चल गया है कि 60 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब जीने के 60 ही दिन बचे हैं, तो आप क्या क्या करेंगे, कैसे समय बिताएंगे, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, क्या विचार करेंगे, सचमुच सोचिए कि आप कैसे जीवन व्यतीत करेंगे। 100% ये फैक्ट है कि 60 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। समय जल्दी जल्दी बीत रहा है, अब बस आत्मा के संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने में ही समय दे रहे हैं। सारा समय यह विचार चलता है कि मैं तो शरीर नहीं आत्मा हूं, मैं दिव्य ज्योति बिंदु हूं। बस इसी भाव से कार्य कर रहे हैं। सारा समय परमात्मा की याद में बीत रहा है, जल्दी जल्दी समय बीतता जाता है। अब सिर्फ 50 दिन बीते हैं, व्यवहार में पूरा परिवर्तन आ गया है, हर पल बस परमात्मा की याद है, आत्मिक स्मृति है। 50 दिन में आत्मा में अच्छे से अच्छे संस्कार भर लेने हैं, सिर्फ 40 दिन बाकी है। समय बीतता जाता है, 30 दिन बाकी है। सचमुच सोचिए आप कैसे बोल बोलेंगे, सारे दिन में आपके क्या विचार होंगे, सचमुच सोचिए। बस अभी 10 दिन बचे हैं, एकदम आप तैयार हो गए कि मैं दिव्य ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मैंने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया है इन 50 दिनों में। बस अभी 2 दिन बचे हैं, आप एकदम तैयार है। किसी को पता नहीं, आपको ही पता है कि 2 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। बस अभी अंतिम दिन है, एकदम आप योग युक्त है, परमात्मा की याद में खो गए हैं। जैसे सांप अपनी खाल को छोड़ देता है, ऐसे ही आप इस शरीर को त्यागने के लिए तैयार हो गए हैं, और बस आत्मा शरीर से निकल गई है, शरीर मृत देह की तरह पड़ा है। लोग आसपास में इकट्ठा हो गए हैं, आपके बारे में बातें कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, आपके बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं। लोग आपको देख नहीं सकते हैं। अब आप बहुत ही तेज गति से, जैसे टनल से गाड़ी गुजरती है, ऐसी बहुत रॉकेट से भी तेज गति से और दुनिया में चले जाते हैं, तारागणों के उस पार सूक्ष्म लोक में पहुंच जाते हैं। वहां आप परमात्मा को मिलते हैं, दिव्य प्रकाशधारी परमात्मा। वो आपको कोई प्रश्न नहीं पूछते हैं कि आपने कैसा कर्म किया, आपको पूरा प्यार देते हैं। इतना प्यार दे रहे हैं कि ऐसा आपने कभी अनुभव नहीं किया होगा। सचमुच फील करिए, परमात्मा आपको बहुत प्यार दे रहे हैं। आपके सर पर हाथ रखते हैं, बस अणु अणु में वाइब्रेशंस फील होने लगते हैं। आप परमात्मा के गले भी लगते, एक बच्चे की तरह उनकी गोदी में बैठ जाते हो। बस एक अनोखा आनंद है, आपको यह फील हो रहा है कि जीवन का सच्चा सुख तो यही है, यही जीवन का सत्य है। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत शक्ति का अनुभव हो रहा है। कि पहले मुझे पता होता तो ये अनुभव रोज मैं करता, बहुत प्यार और दुलार देने के बाद परमात्मा आपको कहते हैं, बच्चे अब तुम्हें वापस जाना होगा, अभी तुम्हारा पार्ट पूरा नहीं हुआ है। वास्तव में आप वापस आना नहीं चाहते हैं, आप तो बस वहीं रहना चाहते हैं। फिर भी क्योंकि परमात्मा ने कहा है, इसलिए आप वापस आते हैं। ये कह के आते हैं कि मैं बस आपका परिचय जन जन तक देने के लिए, यह ज्ञान की बातें सभी तक पहुंचाने के लिए वापस जा रहा हूं। तो जब आप नीचे वापस आते हैं तो देखते हैं आपकी डेड बॉडी को स्मशान में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। तभी आत्मा प्रवेश करती है, आप आंखें खोलते हैं, लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, खुशी भी होती है, और अब आप पूरा जीवन बस उसी सत्य का अनुभव करने के लिए कि मैं तो एक शांत स्वरूप पवित्र आत्मा हूं। परमात्मा का ज्ञान जन जन को देने के लिए आप बिताते हैं, बस पूरा समय योग का अभ्यास करते हैं, संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ करके समय बिता रहे हो। कुछ साल ऐसे पूरा परिवर्तन कर, अब सचमुच आत्मा या शरीर को छोड़ करके वापस परम धाम में चली जाती है। बस कलयुग का अंत हुआ है और आत्मा परम धाम में चली जाती है, वहीं वह सुख आनंद का अनुभव करके वापस सतयुग में एक छोटे बच्चे के रूप में जन्म ले रहे हो, एक प्रिंस के रूप में, प्रिंसेस के रूप में जन्म ले रहे हो, और वह स्वर्गमय सतयुगी दुनिया में पूरा आनंद है बस जीवन व्यतीत करते हो। ऐसे ही बड़े होते हैं, दूसरा जन्म भी होता है और सतयुग और त्रेता का पूरा आनंद लेते हैं। बस ये अनुभव बार बार करेंगे, आपको ये श्रेष्ठ स्थिति को बनाना है। अब धीरे धीरे जागृत स्थिति में आते हैं, आंखें खोलते हैं कि वापस आत्मा इसी जन्म में इसी परिस्थिति में आ गई है, मैं एकदम आनंद की स्थिति में हूं, एकदम खुशी की स्थिति में हूं, सच्चा अनुभव हो गया है। यही अनुभव जन जन तक बांटूंगा, कार्य व्यवहार करते समय भी यही मेरी स्थिति होगी। धीरे से आंखें खोलते हैं, अपने राइट साइड में देखते हैं, सबके प्रति एकदम सद्भावना है, सभी बस आत्माओं को ही देख रहा हूं। लेफ्ट साइड में भी देख, बस सभी आत्माएं उनको ही देख रहा हूं। दोनों हाथों को धीरे धीरे हिलाते, बस मैं आत्मा हूं, मैं वह दिव्य ज्योति बिंदु, उसी भाव से सारे दिन का कार्य करूंगा। पैरों को भी हिलाते हैं, उसी भाव से सारे दिन का कार्य करूंगा। ओ शाम शाम, एकदम जागृत स्थिति में आ जाते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा आइस ब्रेकिंग करेंगे, सभी खड़े हो जाएंगे। देखिए हाथ को ऐसे हार्ट पे रखो और यह सोचना है कि भी आपके हार्ट से पॉजिटिव विचार निकल करके सारे विश्व में फैल रहे हैं, ठीक है? आहा, फैल गए, रखो रखो। अभी सोचो सारे विश्व से पॉजिटिव विचार सद्भावनाएं आपके हार्ट में समा रही। आहा, हुआ? एक बार और करेंगे। आहा, क्या सोचा? अच्छा, अभी क्या सोचना है? हाँ, आहा। ओके, बैठिए, थैंक यू। आज का विषय थोड़ा सीरियस है, फिर भी कोशिश हम जरूर करेंगे कि अब जितना हो सके उसको एंजॉय करें। परंतु सबसे मुख्य बात बताना चाहता हूं कि इस सेशन का अगर आप पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो इस बातों को फील करना, जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको जितना फील करेंगे ज्यादा फायदा होगा। आंखों से आंसू भी आ जाए तो बहुत अच्छा है, सचमुच इन बातों को आप जितना फील करेंगे एकाग्रता ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। एकाग्रता को बढ़ाने की दो प्रकार की टिप्स है, एक तो जनरल टिप्स आपने भी कहीं किताबों में भी पढ़ी होगी, और दूसरी है डीप लेवल की टिप्स, गहराई से एकाग्रता कैसे बने उसकी कुछ युक्तियां। तो आपको कौन सी जाननी है, जनरल टेक्निक जाननी है डीप टेक्निक जाननी है? डीप जाननी है ना, ओके चलो। हाँ तो आपको सच कुछ डीप टेक्निक बताता हूं, और यही सोच करके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी नहीं बता रहे, क्योंकि नहीं तो वहां पर ध्यान जाता है ना, आपका पूरा ध्यान मेरे में हो तो सचमुच आप डीप टेक्निक है वह भी जान पाएंगे। वर्तमान की जो हमारी मन की स्थिति कैसी है, इसके बारे में कबीर जी ने बहुत अच्छा कहा है, कहा कि हाथ फरे माला में, हाथ फरे माला में, जीभ फरे मुख माही, और मन फरे चहु और। तो ये हमारी स्थिति है कि हाथ माला में फिर रहा है, जीभ मुख में फिर रही, और मन सारी दुनिया में घूम रहा है। अब उसे हटा करके सचमुच हम एकाग्रता कैसे लाए? एक बार एक युवती अपने मित्र को मिलने के लिए जल्दी 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 जा रही थी, और रास्ते में एक व्यक्ति नमाज पढ़ रहा था, तो उसके पैर है उसकी चद्दर में पड़ गए, तो देख के वो गालियां बोलने लगा कि क्या बेवकूफ हो, ध्यान भी नहीं है, मैं सब नमाज पढ़ रहा हूं, मेरे चद्दर में पैर डाल दिया, बहुत कुछ बोला उसने। तो उस युवती ने कहा कि देखो तुम नमाज नहीं पढ़ रहे थे, अगर नमाज में तुम्हारा ध्यान होता तो तुमको पता ही नहीं चलता कि मेरा पैर पड़ा है। देखो मेरा ध्यान तो मेरे मित्र में था, क्योंकि मेरा मन मेरे मित्र में एकाग्र हो गया था तो मुझे पता ही नहीं पड़ा कि मेरा पैर चद्दर में पड़ा है, इसे तुमको भी पता नहीं चलता। तो सचमुच इस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए। और क्या फायदा होगा एकाग्रता को बढ़ाने से, इन टिप्स को अपनाने से प्रैक्टिकल में फायदा क्या होगा? डॉक्टर नरेश त्रेहन बहुत ही फेमस हार्ट सर्जन है, उन्होंने कहा है कि मेरा सबसे आराम का समय कौन सा है पता है? कहा मेरे सबसे आराम का समय जब मैं ऑपरेशन करता हूं, क्योंकि उसमें खो जाते हैं, ऑपरेशन करते करते उसमें खो जाते हैं, इसलिए वह सबसे आराम का समय। आप भी अगर पूरी तरह से एकाग्र होंगे तो जो भी कार्य कर रहे वही आराम का समय हो। हमारी तीन प्रकार की अवस्थाएं हैं अगर देखें, आत्मा की तीन स्टेजेस है, एक तो है अशांत स्थिति, दूसरी है शांत स्थिति, और तीसरी है समाधि की स्थिति। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो समाधि की स्थिति तक कैसे पहुंचे, कि जिसमें पूर्णतः एकाग्र हो जाएंगे, उससे भी अच्छा है कहेंगे एब्सॉर्ब हो जाएंगे। एकाग्रता तो छोटी सी चीज है, उससे बढ़कर के है एब्सॉर्प्शन, और एब्सॉर्प्शन से भी बढ़कर के है समाधि। और क्या होगा इन सब चीजों को आप करेंगे तो, जीवन में अपनाएंगे तो क्या होगा? कहते हैं आम मानव परिस्थिति का दास होता है, छोटी छोटी बातों में उदास होता है, जो हर परिस्थिति में मन को अमन बना ले उसी के नाम अमर इतिहास होता है। बस ये करना है, क्या करना है? मन को अमन बनाना है, उससे भी परे जाना है। मैं आपको बताऊंगा कि सचमुच कैसे हम मन से भी ऊपर उठे, उससे भी ऊपर उठेंगे तो बहुत गहरी एकाग्रता होगी। और मैं आपको 10 प्रैक्टिकल टिप्स बताना चाहता हूं, डीप लेवल की टिप्स है, सुपरफिशियल नहीं है, वह भी जानना हो तो कैसे जानना अंत में बताऊंगा, परंतु आज जो भी हम जो चर्चा कर रहे हैं बहुत ही गहरे लेवल की टिप्स है। कहा गया है कि थिंक बिफोर यू एक्ट, कहते हैं ना कोई भी काम करने से पहले सोचो, परंतु वर्तमान युग में आवश्यकता है थिंक बिफोर यू थिंक, क्या सोचने से पहले भी सोचो। बस ये आप एक स्थिति को ला, सोचने से पहले भी सचमुच सोचो कि विचार कहां से आ रहा है, तो ऑटोमेटिक उसमें एकाग्र होने लगे। दूसरी स्टेप है, 1936 में चार्ल्स स्वैब ने लोगों को कहा कि भी मुझे एक इंपॉर्टेंट कोई एडवाइस दो, कहा एक अच्छी सी मुझे आप एडवाइस दो और जो मुझे सबसे अच्छी एडवाइस लगेगी उसको मैं $2,500 दूंगा इनाम। और जिस व्यक्ति को $2,500 मिले इनाम में, उसने क्या एडवाइस दी थी पता है? उसने एडवाइस दी थी, जाननी आप सबको, हाँ देखो चार्ल्स स्वैब ने तो $2,500 दिए उसको, आप मुझे क्या देंगे? हाँ अच्छा, तालियों से थोड़ी पेट भरेगा। एडवाइस के लिए क्या देंगे मुझे? हाँ सबसे आठ आठ आना लूंगा, आठ आना देंगे? थोड़े ही लोग हाँ कह रहे हैं, सब कंजूस लगते हैं यहाँ पर, एक रुपया देंगे अच्छा, आठ आना की वैल्यू नहीं है, नहीं आठ आना भी चलेगा, इतने सारे देंगे तो बहुत हो जाएगा। अच्छा बहुत सारा प्यार देंगे, बहुत अच्छा, अच्छा बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने क्या एडवाइस दी, तो अभी सिंपल है लेकिन आप ध्यान देना, ये बहुत ही पावरफुल चीज है कि जिससे सारे दिन में जो आप काम करने वाले उसमें एकाग्र हो सकेंगे। वो एडवाइस थी कि दिन की शुरुआत सारे दिन में क्या क्या काम करना है उसके लिस्ट के साथ करो। आज हम ऐसा नहीं करते हैं, बस सवेरे उठे ब्रश किया स्नान किया काम में लग गए, कहते ऐसे नहीं। हाँ ऑफिस में जाते हो तो पहले आपके पास वो लिस्ट हो कि मुझे सारे दिन में क्या क्या करना है, वो लिस्ट होगा तो आप ठीक से कर सकेंगे कार्य। और दूसरी एक बहुत ही अच्छी बात है कि जब शेविंग करते हो ना या स्नान करते हो तो तब क्या करो कि जरूरी और बिन जरूरी काम क्या क्या है, आवश्यक और अनावश्यक काम होते बहुत सारे, उसको उसी समय प्रायोरिटी देने लगो। तो आप प्रायोरिटी देंगे तो भी जो जरूरी इंपॉर्टेंट काम है उसी के अंदर आपका मन एकाग्र होगा, उसी के लिए आप समय भी देंगे। तीसरी बात है कि मन को एकाग्र रखो, बड़ा सिंपल है, मन भटकता है ना, मन का भटकना अगर खत्म करना है तो सरल सी बात है, कभी आपने देखा है कि बिल्ली चूहे को कैसे पकड़ती है? देखा है, बूढ़े लोगों ने देखा होगा ना, कैसे पकड़ती है, कैसे पकड़ती है, बोलो बोलो। हाँ देखती रहती है ना कि चूहा से कहां से आ रहा है और जैसे आए उसको पकड़ लेती है। ठीक है, जो वही काम अभी करेंगे। हाँ सभी कमर सीधी कर रख के बैठो, हाँ दोनों पैरों को जमीन पे रख दो, आंखें बंद कर लो और यह सोचो कि जो दूसरा विचार आएगा वो चूहा है, दूसरा विचार जैसे ही आए तुरंत उसको पकड़ना है, देखते रहो जहां से दूसरा विचार आ रहा है, कहां से आ रहा है दूसरा विचार, देखते रहो देखते रहो, जैसे ही आए दूसरे विचार को पकड़ना है, देखते रहो जैसे ही आए दूसरे विचार को पकड़ना है। अच्छा आंखें खोलो, आया दूसरा विचार? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि देख रहे थे। अगर नहीं देखते तो ये 10 सेकंड में 10 विचार आ जाते। तो बस मन को एकाग्र करने का यह तीसरा स्टेप बहुत अच्छा है कि वॉच योर थॉट्स। और वो भी कैसे देखना है ना, साक्षी भाव से देखो। मन डिस्टर्ब भी क्यों होता है पता है? कि हम मन को देखते हैं, कि लोग कहते हैं मन को तो हम सारा दिन देख रहे हैं, परंतु हम क्या करते हैं, साक्षी भाव से नहीं देखते। साक्षी भाव का मतलब क्या है कि कोई भी काम या कोई भी परिस्थिति न अच्छी है न बुरी है, न छोटी है न बड़ी है, लोगों को पसंद आए या न आए, उसमें सफलता है या नहीं है, बस मुझे साक्षी भाव से जो कुछ भी मैं कर रहा हूं उसमें पूरी तरह से खो जाना है। सभी किया ना, बस यही भाव करना, क्या सफलता मिलेगी क्या नहीं नहीं सोचना है, लोग पसंद करेंगे या नहीं करेंगे कोई बात नहीं, परंतु मैं जो कर रहा हूं उसमें मुझे पूरी तरह से खो जाना है। और इसके बहुत सारे फायदे, क्या फायदा होगा ऐसा करेंगे? हाँ सचमुच करके देखना। कई बार मेरी वर्कशॉप्स में मैंने प्रैक्टिकली करवाया, दूसरे दिन लोग आके कहते हैं कि जब हमने ऐसा अभ्यास किया तो हमें लगा कि वी आर मोर देन थॉट्स फीलिंग्स एंड सेंसेशंस. आप अपने विचार नहीं है, आपको जो फीलिंग्स हो रही वो भी सचमुच आप नहीं है. आप इससे ऑटोमेटिक ऊपर उठेंगे. आपको यह भी रियलाइज होगा कि आप यह शरीर नहीं है परंतु शरीर का उपयोग करने वाली चेतना है. वो ऑटोमेटिक रियलाइज होगा. और आपको यह भी फील होगा कि आप विचार भी नहीं है. कहते हैं कि ऑब्जर्व द ऑब्जर्वर, नहीं, जो देख रहा है उसको ही देखो. और क्या होगा, देखो गहराई से सुनना. इसीलिए कहा कि डीप लेवल की बातें, कि क्या होगा, पहले अपने विचारों को देखो और फिर उस चेतना को देखो कि जो विचारों को देख रही है. जो अंदर में दिव्य चेतना है उसको रियलाइज करो कि जो विचारों को देख रही. इसलिए कहा कि देखने वाले को देखो. अगर ये आदत पड़ जाए तो ऑटोमेटिक उसमें एब्सॉर्ब हो जाएंगे. सचमुच का अमन बन जाए, मन अमन बने, उसकी स्थिति आ सकती है. चौथी बात है, सिंपल है परंतु फिर भी जरूरी है, कि सचमुच मन को एकाग्र करना हो ना तो चिंता फिकर से मुक्त हो जाओ. जो सारे डिस्टर्बेंस तो यही है ना, चिंता फिकर इस प्रकार के ही सारे हमारे विचार होते हैं, तो उससे उपराम हो जाओ. सबसे पहले तो यह समझ लो कि परिस्थितियां चिंता नहीं पैदा करती है, परिस्थितियां डिस्टर्बेंस नहीं करती है. दो लड़के 12वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, एग्जाम को सिर्फ करीब डेढ़ मास की देरी थी और दोनों की मां की मृत्यु हो गई. जब एक बच्चे के सामने यह परिस्थिति आई तो बहुत निराश हो गया, इतना डिस्टर्ब हो गया कि पढ़ नहीं पाया, वो एग्जाम भी नहीं दे पाया. दूसरे विद्यार्थी ने सोचा कि मेरी मां कितनी अच्छी थी, सवेरे सवेरे मेरे लिए चाय बना के देती थी, मेरा सारा पूरा ध्यान रखती थी, मेरी मां मुझे कितना प्यार देती थी, और मेरी मां की इच्छा थी कि मेरा मेरिट लिस्ट में मेरी रैंक आनी चाहिए. तो मां की आत्मा को तब ही शांति मिलेगी अगर मेरिट लिस्ट में मेरा नंबर आएगा. तो पहले पढ़ता था उससे तीन गुना ज्यादा पढ़ने लगा. हां, सिर्फ दो तीन घंटा आराम करता था, रात दिन पढ़ने लगा और सचमुच उसका मेरिट लिस्ट में रैंक आया. तो दोनों के सामने परिस्थिति एक जैसी थी परंतु एक उसको उसने पॉजिटिव रूप से लिया, इसलिए एकाग्रता बढ़ गई, पढ़ने की जो क्षमता है वह भी उसकी बढ़ गई. तो इसी जो भी आपके सामने सिचुएशंस है, इस तरीके से उस दृष्टिकोण को बदली कर दो. कुछ भी हो जाए, अमिताभ बच्चन एक बहुत अच्छी बात बताते, आपने भी शायद सुना होगा कि जिससे आप चिंता मुक्त हो सकते हैं. वह कहते हैं कि अगर हमारी इच्छा के अनुसार काम हो तो हमें खुश होना चाहिए, और हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं हो तो भी खुश होना चाहिए क्योंकि उसकी इच्छा के अनुसार हो रहा है. समझे, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो तो सोचो भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहा है, इसलिए भी हमें हर परिस्थिति में खुश रहना है. भगवान ने एक व्यक्ति को 5000 किलो की बहुत बड़ी चट्टान थी, उसको कहा कि इसको धक्का मारो. उसने कहा ठीक है, राजेश भाई जैसा था, हाँ जैसे भगवान कहे वैसे ही करना है. तो धक्का मारता रहा मारता रहा, रोज दिन में 15 घंटे तक उसको धक्का मारता रहा. हाँ, एक दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, एक महीना बीत गया, हाँ लेकिन चट्टान है वो तो 1 मिलीमीटर भी आगे नहीं बढ़ी. तो एक महीने के बाद बड़ा निराश हुआ, भगवान को कंप्लेन की कि अरे भगवान, आपने मुझे कहा कि भी चट्टान को धक्का मारो, मैं मार रहा हूं 1 महीने से लेकिन 1 मिलीमीटर भी आगे नहीं बढ़ी, मैं तो बड़ा निराश हो गया. तो भगवान ने कहा क्यों निराश हुआ, मैंने तुझे क्या काम दिया था, मैंने तो तुझे कहा था चट्टान को धक्का मारो, मैंने थोड़ी कहा था चट्टान को आगे बढ़ाओ, और तूने तेरा काम कर दिया, मैं तेरे पे बहुत प्रसन्न हूं. भगवान ने कहा देख, इससे तुझे बहुत फायदा हुआ, तेरे मसल्स कितने स्ट्रांग हो गए, हाँ, तेरी वर्क एफिशिएंसी कितनी बढ़ गई। ला अभी मैं चट्टान को हटाता हूं, एक धक्का मारा 10 फुट दूर चली गई। तो भगवान जो कहता है ना वह करो, बस भगवान यही कह रहा है कि आपके बस में जो है वो करते रहो, दूसरा सब मेरे ऊपर छोड़ दो। हाँ, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और लोग आपसे अच्छा व्यवहार करे या नहीं करे उसकी भी चिंता नहीं करो। एक बहुत अच्छी मराठी में है लेकिन आप सब समझ जाएंगे ना, क्योंकि उसका ट्रांसलेशन करना मुश्किल है ना। किसी कवि ने बहुत अच्छा लिखा है, कौन जाने कौन होते जो मघा जबड़ून गेले, झाड़ कवि तेचे असावे जिंदगी बदलून गेले। समझे नहीं समझे? अच्छा, अरे वाह, मैंने समझा, समझ जाएंगे। मैं सोचता हूं हिंदी और मराठी सिमिलर है। अच्छा, तो क्या भाव है कि भाई कौन जाने कौन होते, भी कौन था पता नहीं कि जो मेरे पास से गुजर गया। हाँ, झाड़ कविता, कविता का झाड़ होगा जो मेरी जिंदगी को बदल करके गया। आगे बहुत अच्छा है, आगे है, मी मजे ने जीवत आहे प्रार्थना इतकीच देवा, तू सुखाने ठेव त्याना जो माला हिडवून गेले। बस क्या है, जो लोग समझे हो ताली बजा रहे। क्या है कि मैं मजे से जीवन व्यतीत कर रहा हूं, मेरी इतनी प्रार्थना है कि उन सबको सुख से रख कि जो मुझे डिस्टर्ब करके जाते। बस ये प्रार्थना करो भगवान को, बस इतना कहो, तो आप देखेंगे कि लोग कैसा भी हमारे से व्यवहार करे कोई चिंता की बात नहीं। और एक काम क्या करना है पता है, कि सचमुच आपको अच्छी एकाग्रता बनानी हो ना, तो अपनी सारी दुखों की, आपकी समस्या की जो गठड़ी है, एक व्यक्ति बहुत अपनी समस्याओं की, दुखों की गठड़ी लेकर के भगवान के पास गया, कहा हे भगवान देखो मुझे इतनी इतनी समस्या, बहुत वर्णन किया, बच्चों का प्रॉब्लम, पत्नी का प्रॉब्लम, बस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो भगवान ने कहा कि देख, तुझे लगता है ना तेरी गठड़ी सबसे बड़ी है, आ मैं तुझे दिखाता हूं। तो भगवान ने औरों को भी गठड़ी बताई, कहा देखे तेरे पड़ोसी की गठड़ी है, ये तेरे सास की गठड़ी है, ये तेरे बॉस की गठड़ी है, और उन सब गठड़ियों को देखा तो इससे भी बड़ी थी, उनके जीवन में इससे भी ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम थे। हाँ, तो वो सब उसने देखा तो बड़ा संतुष्ट हुआ, कहा भगवान अभी मुझे थोड़ी सी तसल्ली मिली कि मेरे से तो पड़ोसियों के, मेरी सास के, मेरे बॉस के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, मेरे प्रॉब्लम तो बहुत कम है। कहा हा, सभी मुझे अच्छा लगा, ऐसे करके गठड़ी उठा के चलने लगा। तो भगवान कह रहे कहां जा रहा है, कहा जा रहा हूं भी बहुत अच्छा लगा। कहा बुद्धू वो सब देख गठड़ियां छोड़ के गए और तू लेके जा रहा है। अब उसे टुबलाई दू कि मुझे भी इसको यहां छोड़ के जाना है। तो आप सब भी छोड़ के जाएंगे यहां गठड़ी, भगवान का घर है ना, तो अपनी गठड़ी भगवान के घर में सचमुच छोड़ के जाना, तो एकदम हल्के हो गए। हो जाना है, इतने दिनों से भी तो हो रहे हैं ना, 2 दिन से सुन रहे, तनाव मुक्त हो गए या नहीं हुए? नहीं हुए ना, थोड़े थोड़े। अच्छा देखो, आपके पास कोई पेपर हो ना निकालो, छोटा सा भी पेपर निकालो, अपनी डायरी से निकालो, भले फाड़ दो कोई बात नहीं है, या और कोई चीज हो अपने आप, भले आप पेपर ही फाड़ो, चलो पेपर फाड़ो सभी, थोड़ा थोड़ा करो करो, तो आपको अच्छा लगेगा। देखो प्रैक्टिकली छोड़ना है ना, ये तो क्या फायदा है ना, कोई भी पेपर निकालो अपने पॉकेट से, भले अभी करवाता नहीं हूं, टाइम कम है, ये सोचो कि आपने सारे अपने प्रॉब्लम इस पेपर में लिख दिए हैं, काल्पनिक रीति से सोचो, बोले सब प्रॉब्लम पेपर में लिख दिया, अभी खड़े हो जाएंगे, हो जाओ खड़े, पेपर में लिख दिए, अभी राइट हाथ में पकड़ो, पकड़ो सब प्रॉब्लम को, पकड़ा है राइट हाथ में, पकड़ा है, अभी फेंक दो, गया 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 गया, आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम फ्री, मैं गया गया, करो करो, करते नहीं, मैं कर रहा, आप लोग नहीं कर रहे, करो करो, गया गया, प्रॉब्लम गया, सब गया गया गया, मैं मुक्त हो गया, मैं मुक्त हो गया, हो गए, चलो बैठिए, बोले थैंक यू, गया सचमुच नहीं गया। थोड़ा का ही गया, क्योंकि जिसने किया उसका गया। अच्छा, वैसे सचमुच ना गठड़ी को यहां छोड़ देना, सब प्रॉब्लम को दूर करो। अच्छा, पांचवा प्रैक्टिकल स्टेप, सबसे बड़ी बात है कि मन एकाग्र क्यों नहीं होता है, पता है? मन एकाग्र नहीं होता है क्योंकि हमारा भाव नेगेटिव होता है। आपके विचारों के पीछे जो भावना झूठी हुई है ना, वो भावना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी, मैं सोचता हूं कि जब MIT में पढ़ रहे थे, इंजीनियर बन रहे थे, तो बड़ी एकाग्रता से पढ़े होंगे। क्यों पता है? ये नहीं कि वे बड़े साइंटिस्ट बनने वाले थे, परंतु इसलिए क्योंकि वो लिखते हैं कि उनके एडमिशन की एक साल की फीस थी 1000 रुपये। उस समय 1000 रुपये बहुत ज्यादा थे, और कहते मेरे पिता ने तो कभी 1000 रुपये देखे ही नहीं थे साथ में, और उनकी बहन ने अपने बैंगल्स है वह गिरवी रख दिए और 1000 रुपये की फीस भरी। तो ये भी लिखते हैं कि मैं सारा समय सोचता था कि अच्छे से पढ़ना है, इतना अच्छे से पढ़ना है, और पहली तनख्वाह मिलेगी तो बहन के बैंगन छुड़ा लूंगा। तो बस ये भाव था जिसके कारण इतनी एकाग्रता से पढ़े होंगे। तो इसे हमें भी ये करना, जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें भावनाओं को ऐड करो। आप अपनी भावनाओं को ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक जो कार्य कर रहे हैं वो पूरी लगन से करेंगे, उसमें पूरी तरह से खो जाएंगे। छठा स्टेप है कि एकाग्रता की गहराई में जाना है तो अंतर्मुखी बन जाओ। अंतर्मुखता ऑटोमेटिक एकाग्रता को लाती है। जब आप बाहर देखते हो, व्हेन यू लुक आउटसाइड यू ड्रीम, व्हेन यू लुक इनसाइड यू आर अवेकन। तो अंतर्मुखी बनो तो अंदर में जो जबरदस्त शक्ति है वह जाग जाएगी। और इसके लिए थोड़ा समय रोज मौन का पालन करो, समय निश्चित कर दो, 1 घंटा 2 घंटा सचमुच मौन में रहना है। भले काम करो परंतु एक शब्द भी बोलना नहीं। आप देखना ऑटोमेटिक आप धीरे धीरे अंतर्मुखी बनने लगेंगे। सातवीं बात है कि सचमुच एकाग्रता को चाहते हो तो अपनी कामनाओं को कम कर दो। यानी सिंपल फॉर्मूला है, देखो 100% कामना 0% एकाग्रता, 0% कामना 100% एकाग्रता, बस ये दोनों प्रोपोर्शनेट है। एक लड़का झाड़ काट रहा था कुल्हाड़ी से, काटते काटते उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। बेचारा गरीब था, बहुत रोने लगा कि अभी क्या होगा, मेरी कुल्हाड़ी गिर गई। तो जो जल देवता थे प्रकट हुए, आपने भी शायद सुना होगा, प्रकट होके उन्होंने कहा तो कहा मैं बड़ा दुखी हूं। तो जल देवता ने पहले सोने की कुल्हाड़ी निकाली अंदर से, उसने कहा नहीं नहीं ये मेरी नहीं है। फिर वापस अंदर गए तो चांदी की कुल्हाड़ी निकाली, तो भी उसने कहा नहीं नहीं ये मेरी नहीं है। तो फिर से अंदर गए और सचमुच जो उसकी कुल्हाड़ी थी वह बाहर निकाली, तो कहा हां बस बस यही मेरी है। तो उसकी प्रामाणिकता पर बड़े प्रसन्न हुए और कहा अच्छा बेटे तीनों को तू ले जा। तो उसने घर जाके अपनी पत्नी को यह समाचार सुनाया तो बड़ी खुश हुई। उसने कहा मैं भी जाके जल देवता को देखती हूं कैसे है ना? तो वहां गए और तालाब के पास देखने लगे अंदर, तो अंदर गिर गए। तो फिर से बेचारा रोने लगा बहुत। हाँ, तो फिर से जल देवता प्रकट हुए, कहा कि बेटे क्या हुआ? कहा अरे रे उस बार तो कुल्हाड़ी गिरी थी, आज तो मेरी पत्नी अंदर गिर गई। तो जल देवता अंदर गए और अंदर से ऐश्वर्या राय को बाहर निकाला। तो कहे तेरी पत्नी? कहा हाँ हाँ यही मेरी पत्नी है। तो जल देवता ने कहा कमाल है, तू पहले इतना प्रामाणिक था, अभी झूठ कैसे बोलने लगा? तो उसने कहा क्या करूं भगवान, आपने पहले ऐश्वर्या राय को निकाला, अगर मैं कहता है मेरी पत्नी नहीं है तो आप रानी मुखर्जी को निकालते, फिर से मैं कहता है मेरी पत्नी नहीं है तो आप मेरी असली पत्नी को निकालते, फिर मैं कहता है मेरी पत्नी है तो तुम कहते तीनों को ले जा। एक पत्नी को संभालने में मैं इतना डिस्टर्ब हो जाता हूं, तीन को कैसे संभालूंगा। हाँ, समझ गए ना कि जितनी कामना कम करो एकाग्रता ऑटोमेटिक बढ़ेगी और जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। आठवीं बात है, और गहराई में हम जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप गहराई में जा रहे हैं कि आज क्यों एकाग्रता नहीं हो रही है, क्योंकि हम भ्रम में जी रहे हैं। सचमुच आज जो हमारा जीवन है ना, वह जो सच है वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, हम भ्रम में जी रहे हैं। अच्छा लग रहा है ना, थोड़ी देर बैठेंगे ना, देरी तो नहीं होती है। देखो ये भी बहुत ही प्रेरणादायक बात है कि एक मां के बच्चे में दो शिशु पल रहे थे, बड़े हो रहे थे, और एक शिशु ने दूसरे बच्चे को कहा कि अरे देख अभी हम मां के गर्भ में बड़े हो रहे हैं और एक दो महीने के बाद हम दुनिया में बाहर आएंगे, ये दुनिया कितनी अच्छी होगी, हम आगे बढ़े। दूसरे का चुप बैठ, यही हमारा संसार है, बस यहीं पर दुखी होना है, यहीं ऐसे जुकड़ करके रहना है, इसके बाहर कोई दुनिया नहीं होती है। तो पहले वाले ने फिर से कहा कि नहीं नहीं, सचमुच 9 मास पूरे होंगे, हमारा जन्म होगा, हम मां का साक्षात्कार करेंगे, हमारी मां कितनी प्यारी होगी, हमारी मां हमें अपने पिता से परिचय भी करेगी, करे बुद्धू तू पागल हो गया, बस यही जीवन है, यहां जो दुख भोग रहा है वही सत्य है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो बस हमारी भी स्थिति वो दूसरे जैसी है। सत्य को हम सब जानते हैं कि भल बच्चा 9 मास दुखी होता है मां के गर्भ में, लेकिन फिर वह सचमुच उसका जन्म होता है, मां को देखता है, दुनिया में आता है, हम सब जानते हैं। तो ऐसे ही आज भी जो हम समझ रहे हैं ना, वह भ्रम है, जो हम सब जी रहे हैं वह सचमुच आज हम भ्रम में जी रहे हैं। उससे बाहर निकलो, सचमुच सोचो कि भी आध्यात्मिक जीवन जिसी के लिए परमात्मा ने हमें इस दुनिया में भेजा है ना, तो वह पूर्ण आध्यात्मिक जीवन भी जो हम अनुभव भी करते हैं ना, हम सब कोई ना कोई, अब आप ध्यान करते होंगे और कोई अभ्यास करते होंगे, लेकिन वो बहुत थोड़ा सा है। हम जो अनुभव कर रहे हैं वह तो थोड़ा सा, बस कुछ शांति मिल गई, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला, सोचते हैं वही ध्यान है, वह ध्यान नहीं है। वास्तव में अब तक तो आपने ध्यान की शुरुआत को भी अनुभव नहीं किया। हाँ, ईश्वर के हम सन्मुख हो और वह जो पल में इतना रोमांच है ना, इतनी एक अलौकिकता है कि जिसका वर्णन नहीं कर सकते, और सचमुच लक्ष्य यह रखना है कि वहां तक पहुंचना है। आज हमारी स्थिति कैसी है पता है? हाँ, कि एक बहुत बड़ी कंपनी में एक व्यक्ति काम करता था, उसको सिजोफ्रेनिया हो गया, तो उसे बहुत बड़ी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, बहुत अच्छे से उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी। तो एक मास के बाद उसके सीनियर मैनेजर थे, उसको मिलने के लिए गए और कहा कि कैसे हो? तो उसने कहा बहुत अच्छा हूं, यहां मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत सुखी हूं। कहा कि कंपनी को कब से ज्वाइंट करोगे? के बुद्धू हो क्या? इतनी अच्छी दुनिया, इतना अच्छा सब कुछ, ये छोड़ के मैं कभी आने वाला नहीं हूं, पागल हूं क्या? तो बस हमारी भी यही स्थिति है कि हम यही सोच रहे हैं, ये जो दुनिया है ना, कि भाई आप कहीं के मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, बस यही अच्छा है, परंतु ये तो मेंटल हॉस्पिटल है, ये समझ लो ना, इसको अपना नहीं समझो। वह जो आध्यात्मिक अनुभव है वह सबसे अच्छा अनुभव है। और जब मन एकाग्रता होता है ना, मैंने कहा भी उसमें मन नहीं है, उसमें कोरी चेतना है सिर्फ, एकाग्रता में सिर्फ वह एक आत्मिक स्मृति का अनुभव है। 9वीं बात है कि ध्यान की गहराई का अनुभव करो, सचमुच एब्सॉर्ब होना है तो ध्यान की गहराई का अनुभव करो। और कभी आपको पता है ध्यान और मेडिटेशन एक नहीं है, आज हम मेडिटेशन को ही ध्यान समझते हैं, परंतु ध्यान और मेडिटेशन में बहुत बड़ा फर्क है। तो ट्रांसलेशन मिल नहीं रहा था ध्यान का, तो मेडिटेशन कर दिया। वास्तव में मेडिटेशन में विचार है, परंतु ध्यान में विचारों के द्वारा विचारों से परे जाना। ध्यान में विचार है, सॉरी मेडिटेशन में विचार है, ध्यान में विचार शून्यता है, अंतिम स्थिति है ये। से क्या वो पता है, ध्यान चाइना में गया तो चान हो गया और जापान में गया तो जैन हो गया, कि सचमुच इससे हमें परे जाना। हाँ, जब तक उसकी गहराई में हम नहीं गए हैं हम अनुभव नहीं कर सके। और ध्यान की स्थिति में कोई विचार नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, बस प्रकाश ही प्रकाश है, बस आत्मा के मूल गुणों का अनुभव है उस फाइनल स्टेज में। और गहराई से जानना है ना, सबको अच्छा लग रहा है, बोलते नहीं हो, देखो गहराई से जानना है ना। मेडिटेशन की गहराई को जानना हो तो कुछ 6 स्टेजेस है, जब भी आप मेडिटेशन का अभ्यास करते हो वो स्टेप बाय स्टेप आती है, कहीं आध्यात्मिक उन्नति की भी यह 6 स्टेजेस है। क्या क्या 6 स्टेजेस? पहली है जागृति के द्वारा आप शरीर को भूलने की कोशिश करते हो। अभी जो कर रहे हो ना, यहां तक अभी आप पहले स्टेज में ही हो अधिकतर, कि बहने आपको चिंतन देती है मैं आत्मा हूं, शरीर से परे हूं, एक दिव्य ज्योति हूं, आप क्या कर रहे हो, जागृत रीति से शरीर को भूलने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, मेजोरिटी यहां ही रहते हैं। फिर सेकेंड स्टेज है जिसमें थोड़े लोग पहुंचते हैं। हाँ, पुरुषार्थ करने पर हो सकता है कि 50% सेकेंड स्टेज तक भी पहुंचते हैं, वह स्टेज है शरीर को भूल जाना। यहां भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों की ऐसी स्टेज बनी होगी कि आप जब ध्यान कराते हैं तो शरीर भान को थोड़ी क्षणों के लिए भी शरीर के भान को भूल गए। फिर तीसरी स्टेज है, अगर सेकेंड स्टेज बनी तो थर्ड ऑटोमेटिक आएगी। अगर 2 सेकेंड भी आपकी सेकेंड स्टेज बन गई तो थर्ड स्टेज आएगी कि आत्मा के मूल गुणों का अनुभव करने लगे, शांति, प्रेम, आनंद। हाँ, कुछ लोग 30-40% लोग ये भी अनुभव करते हैं। परंतु इसके बाद स्टेज 4th स्टेज आती है कि परमात्मा के वैश्विक कंपनों को कैच करना, वातावरण में वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है सारे, उसको कैच करना। जब आप कैच करते हैं तो और थोड़ा आपको अच्छा लगता है, गहरी शांति मिलती है, हल्केपन का अनुभव होता है, आपको लगता है मेरा एनर्जी लेवल बढ़ गया। लेकिन फिर भी अभी भी योग नहीं है, यहां तक भी परमात्मा से लिंक नहीं जुटी है, बस वह प्रंकप कंपनों को ही सिर्फ आप कैच कर रहे हो। फिर 5वीं स्टेज है परमात्मा से संबंध जुट जाएंगे, हो सकता है 10% का ही जुटता होगा, कुछ दिन सचमुच अभ्यास करने से 10-1% का वह परमात्मा से संबंध जुटता है। और अंतिम स्टेज जो है कि जो शायद 1-2% ही हासिल कर पाते हैं, और उसका हमें लक्ष्य होना चाहिए, सबका है वह लक्ष्य कि अंतिम स्टेज तक हमें जरूर पहुंचना है, कि जो चरम सीमा है। और वह चरम सीमा है कि परमात्मा के गुणों को प्रवाहित करने वाला माध्यम बन जाए, वी बिकम चैनल ऑफ गॉड्स क्वालिटीज, और आपके द्वारा वो चैनलाइज होने लगेगी, आपकी चैनल्स भी ओपन हो जाएगी। अलग अलग रीति से सभी ने वर्णन किया इसका, और यह लक्ष्य रखो कि भी हमें भगवान का की शक्तियों को प्रवाहित करने वाला माध्यम बनना है। हाँ, गहराई से इस पर छोड़ना, भले मैंने शॉर्ट में बताया पर उस पर पूरी किताब लिखी जा सकती है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप 1-2 साल में हम उस स्टेज तक पहुंच सकते हैं। और 10वीं पॉइंट है कि परमात्मा से एक रूप होना। ध्यान को 6 स्टेजेस अलग है, मैं अभी आपको मन को एकाग्र करने के जो 10 स्टेप्स बता रहा हूं उसमें से 10वां स्टेप है कि परमात्मा में मन को हम एक रूप हो। श्रद्धा जो है, श्रद्धा और लगन से परमात्मा की याद में जुट जाओ। सिंपल बात भी, श्रद्धा को कभी भी खत्म नहीं करो। कहते हैं पंखों में अगर जान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं, होठों पे अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, पेड़ पर बैठी बुलबुल ने गुणगान किया, श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। फर्स्ट इंग्रेडिएंट है कि फेथ ना, उसको बढ़ाते जाओ ऑटोमेटिक आगे बढ़ेंगे। हम सब पूजा करते हैं ना, किसके किसके घर में मंदिर है, किसके किसके घर में मंदिर है, हाथ उठाओ। देखो घर में मंदिर है ना, परंतु आपको यहां क्यों बल्ला बुलाया है पता है? घर को मंदिर बनाने के लिए। यहां जाके अभी क्या करना है? घर को मंदिर समान बनाना है। और पूजा में मन एकाग्र क्यों नहीं होता पता है? क्योंकि पूजा में प्रशंसा है, प्यार नहीं। प्रशंसा भगवान की करते परंतु भगवान से प्यार नहीं है। हाँ, एकाग्रता चाहिए तो परमात्मा से प्यार करना सीखो, ये भी सिखाना पड़ेगा। हाँ, मित्र संबंधियों से प्यार करते हो ना, बस ऐसे ही भगवान से प्यार करना। और भगवान से प्यार में अगर सचमुच आपको जुट जाना है, जब पूजा करने के लिए बैठते हो तो पूरा उसमें मन एकाग्र हो जाए। आसपास में क्या बातचीत चल रही है, फोन चल रहा है, टीवी चल रहा है, कोई सुध-बुध रहे नहीं, उसके लिए बस ये थोड़ा सा होमवर्क करना, ये थोड़ा सोचना कि देहधारी भी हमको प्यार देते हैं और परमात्मा प्यार देते हैं, उसमें क्या फर्क है। बस इस पे आप गहराई से सोचना तो मन एकाग्र हो जाएगा। आज हम सब कुछ अपने बच्चों के लिए कर देते हैं। कई माता पिता है कि सब कुछ अपने बच्चों के लिए कर दिया, लेकिन बच्चे बड़े हो गए तो बहुत बड़े ऑफिसर बन गए, कहते कहने को भी शर्म आती है कि मेरे मां बाप है। ये कोई बहुत ही प्रेरणादायक बात है, मैंने कई बार यह सुनाई है, मुझे भी प्रेरणा मिली, शायद आप सभी को थोड़ी भी इससे प्रेरणा मिले तो मैंने जो पुरुषार्थ किया है इस लेक्चर को तैयार करने का वह सफल हो जाएगा। हमारी चंद्रिका बहन है अहमदाबाद में, वो एक बार वृद्धाश्रम में गई और वृद्धाश्रम में जो भी महिलाएं थी सभी सभी को एक एक लड्डू है वह दिया प्रसाद के रूप में। तो एक बहन थी, उसने वो लड्डू ले लिया लेकिन खाया नहीं। तो उनका संकल्प चला कि सभी खा रही है, क्यों नहीं खा रही है? तो उसको पूछा कि माताजी आप भी खा लो, चाहे तो मैं आपको दूसरा लड्डू देती हूं। कहते नहीं नहीं। कहा क्यों आप ये लड्डू नहीं खा रहे? कहते मेरे बेटे को ये बहुत पसंद है, इसलिए मेरा बेटा मिलने के लिए आएगा, उसके लिए मैंने रखा है, उसको बहुत ही अच्छा लगता। फिर पूछा आपका बेटा क्या कर रहा है? तो कहा मेरा बेटा डॉक्टर है। फिर तीसरा प्रश्न पूछा कि आपका बेटा पहले कब आया था? तो कहा पहले 8 मास पहले आया था। अब कब आएगा? कहते पता नहीं। देखिए मां का दिल है, मालूम भी नहीं है। हाँ, बेटा तो डॉक्टर है फिर भी वृद्धाश्रम में भेज दिया, कब आएगा वो भी मालूम नहीं है, फिर भी वो लड्डू बेटे के लिए रखा। तो सोचना जरा इस पर, और कैसे हम डिटैच हो जाए। भले संभाल जरूर कर, इसकी मतलब यह नहीं कि हम संबंधों की संभाल नहीं करें, परंतु कहीं पर अटैचमेंट नहीं हो। बहने सुन रही है ना ठीक से? बस एक काम करना, अपनी सास को कभी वृद्धाश्रम में नहीं भेजना, ओके? तो आपकी मां को कोई भेजे तो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना? तो क्यों, वो भी तो किसकी, कोई उसकी बेटी है ना, उसकी बेटी को भी दुख होगा। तो बस भले बहुत खराब मां हो ना, मेहनत करके उसके लिए छोटा सा घर बना देना, लेकिन वृद्धाश्रम में उसे नहीं भेजना। अच्छा, और क्या करना है? देखो दिमाग से परमात्मा खुश नहीं होती है, परमात्मा दिल से खुश होते हैं। जब हम भगवान को दिल से याद करते हैं तो भगवान खुश होते हैं। सच्चे मन से बात नहीं करते हाँ तो पत्नी भी पसंद नहीं करती है, ऐसे कुछ भी बोलो तो पत्नी को भी अच्छा नहीं लगता है, तो फिर भगवान को कैसे अच्छा लगेगा? तो भगवान से बात करते हो तो क्या करो, सच्चे दिल से बात करो। गांधी जी ने बहुत अच्छी बात कही, इस पर भी अटेंशन देंगे तो आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी। गांधी जी ने कहा है कि वर्डलेस हार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन हार्टलेस वर्ल्ड। भले शब्द नहीं है, दिल है, सच्चा दिल है, कोई शब्दों की जरूरत नहीं है। मैंने देखा है अनपढ़ हमारे पास आने वाली माताएं भी भगवान में खो जाती है, कभी स्कूल में गई नहीं, शब्द नहीं है परंतु भाव है उनके पास। रामकृष्ण परमहंस अपने गुरु के पास गए, हाँ उनके भी गुरु थे, उनको कहा कि भी लोग है ना मुझे पागल कहते हैं, मैं भक्ति करता हूं तो लोग कहते हैं पागल हो गया, मैं क्या करूं। उनके गुरु ने कहा तुम कोई चिंता नहीं करो, सब लोग पागल है, जो दूसरे लोग है वो व्यक्ति वस्तु और वैभव के पीछे पागल हो, तुम भगवान के पीछे पागल हो। और भगवान के पीछे पागल होना बहुत अच्छा है। राज सब भी भगवान के पीछे पागल होंगे कि नहीं होंगे? बस ये करो, देखो आपकी एकाग्रता बहुत अच्छी हो जाएगी। और अच्छी एकाग्रता चाहिए ना, डिस्टर्बेंस अगर बिल्कुल नहीं चाहिए तो क्या करो पता, एकदम निश्चिंत हो जाओ। जो निश्चिंत है उसका मन भटकता नहीं है, जब कुछ भी अंदर में ना तब मन भटकता है। एक बार एक संत है, वह रास्ते में जा रहे थे, बारिश का टाइम था और एक हस्बैंड एंड वाइफ भी नए नए मैरिज हुए थे, वो लोग जा रहे थे तो जल्दी जल्दी में जान उनके पैर पानी में गिर गए तो थोड़े से छींटे है उस महिला के ऊपर गिर गए, तो पति को बहुत गुस्सा है, तीन चार चांटे लगा दिए उसको। वो कुछ नहीं बोला, कहा भाई साहब मेरे से गलती हो गई, मेरा तो ध्यान नहीं था, लेकिन उल्टा सीधा बोल के वो लोग आगे चले गए। दूसरा एक नौजवान पीछे से आ रहा था, उसने सोचा कि इसकी पिटाई करनी चाहिए, लेकिन यही तो खुद कुछ बोलता नहीं है, अगर वो थोड़ा अपोजिशन करता तो मैं भी उसमें साथ देता, ये खुद ही अपोजिशन नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं। और फिर वो संत तो दूसरी गली में चले गए, वो लोग आगे बढ़े ना, वो लोग आगे बढ़े तो देखा कि एक पुराना मकान था, उस पर एक बहुत ही अच्छा पौधे पे फूल था। तो उसने कहा कि वो पत्नी ने कहा मुझे फूल चाहिए, तो उसने जाके कोशिश करके फूल को तोड़ा ना, तो ईंटें भी गिर गई और फ्रैक्चर हो गया। तो नौजवान ने सोचा जो पीछे आ रहा था कि भाई ये सचमुच बहुत ही पहुंचे हुए संत लगते हैं, तो इसने इसको दो चांटे मारे तभी तो कुछ नहीं बोला, लेकिन अब इसकी टांग तोड़ दी। तो भागता उसके पास गया और पैर पकड़ लिए, कहा कि तुम बहुत पहुंचे हुए संत हो। अभी पता चला वो आगे गया है ना, उसकी दोनों टांगे तोड़ी। उसने कहा नहीं नहीं भाई साहब मुझे तो कुछ भी पता नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बस मैं तो भगवान को याद कर रहा हूं। फिर उसको कहा ऐसा क्यों हुआ, उसकी टांगे क्यों टूट गई? कहा हो सकता है, एक संभावना यह है कि देखो उसकी पत्नी पर थोड़े से छींटे पड़े तो उसने मुझे दो चांटे मार दिए ना, तो भगवान के भक्त को दो चांटे लगे तो भगवान क्या करेगा, उसकी टांगे तोड़ दी। तो बस आप निश्चिंत रहो कि हमें अच्छा काम करके जीवन में आगे बढ़ना है, अपनी एकाग्रता को बढ़ाना है, वो कर्मों का हिसाब किताब है सारा भगवान देख लेगा। ठीक है, थोड़ी देर ध्यान करना है, अभी करेंगे पावरफुल ध्यान करना है कि ऑर्डिनरी? अच्छा चलो सभी कमर को सीधी रख के बैठेंगे। एक एक मशीन है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि आपका ध्यान अच्छा लगा या नहीं लगा, है ना? नहीं जैन साहब आप पे करे तो यहां बैठे, यहां लगाएंगे आप, देखो है ना। ठीक, बोले आप यहां आ जाइए, फिर तो यहां बिठा दीजिए ना। आइए, सिंपल टेक्निक है, आपको कहीं विधि अलग अलग सिखाई है, मैंने ऐसी पांच प्रकार की विधि निर्माण की है। हाँ, फर्स्ट डे जो लोग थे सवेरे 4 बजे थे, हाँ सेकंड डे इनॉग्रेशन के बाद कौन कौन थे सवेरे 4 बजे? हाँ तो कराया था, याद है क्या ध्यान कराया था? बलून में ऊपर जा रहे हैं, है ना, थोड़ा पहले बताया नहीं था, वो एक टेक्निक है। आज आपको दूसरी विधि करा रहा हूं कि जिसको कहते हैं समुद्र के किनारे का अनुभव, जैसे कि आप समुद्र के किनारे बैठे हैं और उसकी गहराई में जा रहे हैं, वो सारी चीज को हम लिंक करेंगे मेडिटेशन के साथ वो सारी। और मैं जैसे जैसे कहूं ना, आप बस अनुभव करना, आप मेरे साथ साथ फील करेंगे तो भी आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, कमर को सीधी रख के बैठिए। देखो जिनका कौन लोग अभी तक ध्यान नहीं लगा, हाथ हाथ उठाइए, ऐसे कोई है जिसका अभी तक ध्यान नहीं लगा? अच्छा, थोड़े से है ना, देखना अभी शायद हो सकता है अभी आप अच्छे से कोशिश करना तो अभी आपका ध्यान लग जाएगा। और ये मशीन में क्या करते हैं पता है? ये बेसिकली बायो फीडबैक मशीन है कि जिसमें पॉइंटर को एडजस्ट करना होता है मैक्सिमम लेवल पर, एक बार पॉइंटर को मैक्सिमम लेवल पर एडजस्ट करे फिर आप थोड़ी देर बैठेंगे तो भी वहीं रहेगा जब आपका दिखेगा, है ना, मैक्सिमम पर है। अगर ध्यान लगने लगेगा तो वह मिनिमम लेवल पर आएगा, नहीं तो वहीं रहेगा। यहां रख दे कंफर्टेबल, अभी नीचे भी रख सकते बस नहीं, लेकिन अनकंफर्टेबल। हाँ ठीक ठीक, हाँ बस देखो अभी भी मैक्सिमम पर ही है ना लेवल को। ओके बस, हाँ ठीक, वेरी गुड। देखो अच्छी, हाँ कमर को सीधी रखिए, दोनों पैरों को जमीन पे रखेंगे और बस जैसे जैसे मैं बताऊं ना उसी में खो। सब तैयार है ना? थक तो नहीं गए ना? थक गए तो भले हाथ पैर हिला लो, थोड़ा पैरों को भी हिला लो ताकि थकावट है तो दूर हो जाए आपकी। हाँ ओके, हाँ जी, हाँ कमर को सीधी रखनी है, दोनों पैरों को जमीन पे रखना है, हाथों को ऐसे मोड़ लीजिए। हाँ थोड़ा सा पैर आगे, यहां ये बेस्ट पोजीशन है, बस एकदम शरीर को हल्का कर दीजिए और जो भी संवेदनाएं हाथों की उंगलियों में हो रही है बस उसी को फील करिए। हाथों की उंगलियों में होने वाली संवेदनाओं में ही पूरी तरह से खो जाते हैं, बस साक्षी भाव से इन संवेदनाओं को ही देखते रहे। जैसे ही साक्षी भाव से इन संवेदनाओं को देखते हैं विचारों की गति भी शांत होने लगती है। अब हम विचारों को मोड़ सकते हैं, ये सोचिए कि आप समुद्र के किनारे पर बैठे हैं, बहुत ही सुंदर समुद्र का किनारा है, सूर्यास्त का समय है, बस आप उस वातावरण का पूरा आनंद ले रहे हैं, मंद मंद शीतल हवा चल रही है उसका आप पूरा आनंद ले रहे हैं। सूर्य अस्त होने को है, आप दूर दूर पानी में देखते हैं तो रंग बेरंगी भी किरणें बिखेर रहा है, सूर्य रंग बेरंगी किरणें बिखेर रहा है, पूरा उसका आनंद ले रहे हो। पूरा आनंद ले रहे हो, बहुत अच्छा लगता है, बस उसी में खो जाते हैं। अब धीरे से उठकर पानी में पैर रखते हो, जैसे ही पानी में पैर रखते हैं तो वह लहरें आपको असर करती है, जीवन भी ऐसा ही है। जब हम किनारे पर होते हैं तो परिस्थितियां हमें प्रभावित करती हैं। अब आप समुद्र की गहराई में जा रहे हैं, जैसे जैसे गहराई में जाते हैं तो लहरें समाप्त हो जाती है, एकदम पानी में स्थिरता है। ऐसे ही जब हम जीवन को भी गहराई से समझ लेते हैं तो मन पूरी तरह एकाग्र हो जाता है। ये सोचिए कि मैं तो दिव्य चेतना हूं, मस्तिष्क के मध्य में दिव्य ज्योति का चित्र निर्माण करे कि मैं यह दिव्य चेतना हूं, मैं को मेरे से अलग कर दीजिए। यही भाव रहे कि मैं वह एक जगमगाती ज्योति हूं। जैसे ये भाव आता है शांति का अनुभव होता है, हल्केपन का अनुभव होता है और गहराई में जा रहे हैं, तले में जाते हैं तो ज्ञान के हीरे मोती प्राप्त होते हैं। परमात्मा भी सागर के समान रूप में बिंदु पर सर्व गुणों के सिंधु है परम पिता परमात्मा। उनसे ज्ञान के हीरे मोती प्राप्त हो रहे हैं, एकदम हल्के हो गए, एकदम हल्के होके जैसे आपका सिर्फ प्रकाश का शरीर और आप पानी के बाहर आते हैं, बाहर आते अनुभव करते हैं एक फरिश्ता आपके सामने खड़ा है, बस एक प्रकाशमय फरिश्ता आपके सामने खड़ा है, उसका हाथ पकड़ करके आप उड़ रहे हैं, बस आप भी हल्के हैं, वो फरिश्ता आपको बहुत ऊपर ले जा रहा है। सितारों की दुनिया में चक्कर लगा रहे हो, एकदम ऊपर ले गया है। चांद सितारों की दुनिया में घूम रहे हो, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होता है। सितारों की दुनिया से भी परे सूक्ष्म वतन में ले गया है, बस वहां सब फरिश्ते ही फरिश्ते हैं। दूर से आपको एकदम जगमगाता फरिश्ता नजर आ रहा है, परमात्मा उसके माध्यम से आपको बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं। परमात्मा का वरद हस्त आपके सर पर है, आपको अनेक वरदान मिल रहे हैं, जो पाना था वह सब कुछ आपने पा लिया है, बस यही अनुभूति होती है। एकदम आप भाव विभोर हो गए, निस्वार्थ प्यार परमात्मा आपको दे रहे हैं, अपने सब दुख परमात्मा को सुना दीजिए, हल्के हो जाइए, एकदम सारे दुख परमात्मा को सुना देते हैं, भाव विभोर होके उनको गले मिलते हैं, बस परमात्मा की बाहों में आप समा गए, एकदम हल्के हो गए, बहुत अच्छा लगा। जन्म जन्मांतर की आपकी प्यास बुझ गई है, सही रास्ता मिल गया है, अब आप एकदम हल्के होकर के नीचे आ रहे हैं। नीचे आते जाते एकदम हल्के, बस अतीन्द्रिय आनंद में है, बिल्कुल हल्के, ऐसा हल्कापन कभी भी अनुभव नहीं किया था। एकदम नीचे आ गए। धीरे से जागृत स्थिति में आएंगे, यह सोचेंगे इसी अवस्था को सदा के लिए कायम रखना है, यही मेरी मूल स्थिति है, इसे सदा के लिए कायम रखना है। धीरे धीरे जागृत स्थिति में आइए, आसपास में देखिए, जो लोग भी बैठे सब आत्माएं हैं, बस दिव्य आत्माओं को, शांत स्वरूप आत्माओं को देख रहा हूं। ओ शांत शांत। तो ये एक और विधि थी, कैसा लगा? हाँ, किसको बहुत 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 अच्छा, किसको लगा? बहुत 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 अच्छा लगा सचमुच। आइए आइए, देखो अच्छा लगा ना, तो आइए जल्दी जल्दी आइए। जिसको बहुत 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 अच्छा लगा वो लोग आओ जल्दी आइए। अरे डर रहे हैं सब, अच्छा लगने में हाथ उठाया अभी यहाँ आ नहीं रहे, आपको इनाम मिलेगा, जो जल्दी जल्दी आएगा इनाम मिलेगा। आओ आओ आओ, किसको बहुत 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 अच्छा लगा। अच्छा देखो भाई साहब को पूछते हैं, पहले तो ना बीच तक आ गया था, फिर से यहाँ चला गया, देखा था आपने, इट वेंट टिल मिडल। हाँ टिल मिडल तक गया, मिडल तक गया था, एकदम नीचे तक नहीं गया ना, और फिर वापस आया। पहले जैन साहब को ही पूछते कैसा लगा, हाँ क्या अनुभव हुआ?
ये जो अनुभूति है, ये जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत ही हल्केपन की अनुभूति है, और इस वक्त ऐसा लगता है कि मन में किसी प्रकार का विचार आना या जाना बंद हो जाता है, और ऐसा महसूस होता है कि आप जैसे बादलों की तरह या रूई के पांव की तरह हल्के हो गए हैं, और एक जो वेटलेसनेस की फीलिंग होती है, मैं समझता हूं वो अल्टीमेट है। अगर वहां तक हम पहुंच पाते हैं, उसके लिए हमारे मन में कभी कभी कुछ शंकाएं कुछ विचार रहते हैं, तो उस स्थिति में आने में थोड़ा समय लगता है। यहां हम जब इस हॉल में बैठे हैं, हमारे आसपास बहुत लोग बैठे हैं, हो सकता है इस स्थिति को पाना संभव न हो, लेकिन ये 5 मिनट का प्रयोग है जिसमें एक आपको अनुभूति किए जाने का एक प्रयास किया गया है। और मुझे लगता है कि जब आप इस हॉल में जब आपने प्रवेश किया था और तब से अब में जो अंतर है, अगर आप उसे महसूस कर सकें, मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब का यही उद्देश्य रहा होगा।
देखो जो भाई बहनों को बुलाया ना, शॉर्ट में बताओ आपने क्या अनुभव किया। हाँ शॉर्ट में, माइक माइक ऑन करेंगे,
ओम शांति। मुझे तो ऐसा ही लगा कि मैं स्वर्ग में जाके खुदा को स्पर्श करके वापस आ रही हूँ, और मेरे रोंगटे सब खड़े हो गए हैं। अभी बहुत एकदम हल्कापन लगता है, और ऐसा लगता है ये बस एक 2 मिनट की जिंदगी में जी गई हूँ, बाकी कुछ नहीं है, इतना हल्कापन लगता है। बहुत अच्छा लगा, बहुत।
और बताएंगे भाइयों में से कोई क्या, शॉर्ट एक दो लोग।
ओम शांति। वो ऐसा लगा कि मानो स्वर्ग में जा रहा है। हम
और एक कोई सुनाना चाहे बस।
ओम शांति।
थोड़ा ही टाइम लेंगे, उठिएगा नहीं।
डॉक्टर गिरीश भाई ने जो प्रयोग बताया है उससे हमको बहुत अच्छी अनुभूति हुई है।
क्या हुआ?
सारा मतलब के बाहर की दुनिया से 2 मिनट के लिए अलिप्त हो गए थे। थैंक यू।
एक साल लास्ट अभी है, फिर हम हमारे चेयरपर्सन को, चेयरपर्सन है उनको भी सुने। रखिए नजदीक रखिए।
ओम शांति। मेरे को तो ऐसा इतना अच्छा लगा, मैं रोने लगी। बाबा मुझे सचमुच आज मेरे प्रवेश कर गई है, ऐसे लग रही है अभी भी। मेरे को भाई बहुत अच्छा लगा, मैं बाबा के दरबार में आई हूँ। सचमुच बाबा महान है, बाबा महान है। ओम शांति।
बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा। देखो बहन को क्या नाम है? हाँ अनीता बहन, अनीता बहन को, वो आपको भी हो सकता है ना, आप कोशिश करेंगे आपको भी ऐसी अनुभूति। हाँ पहले बैठिए, ओम शांति। अच्छा हाँ, नेपाल से आए, बहुत अच्छा। देखो बस अभी इन पंक्तियों के द्वारा पूरा करता हूँ ना, और क्या बात रह गई? हाँ क्या बात रह गई? बीच में बोला था ना, क्या रह गया? फीस देने की है। आठ आठ आना देंगे सब? हाँ दो लोग ही बोल रहे, सब नहीं देने वाले। अच्छा देखो, हाँ आठ आना फीस क्या है मालूम है? इस चीज को अच्छे से आपको अनुभव करना है तो आप यहां से वापस जाएंगे तो एक सप्ताह में सेंटर पे आठ बार जाना। हाँ, वह है आठ आना फीस। सात दिन सात बार जाना, संडे के दिन दो बार जाना। आठ आना कौन कौन देंगे? प्रॉमिस? हाँ भगवान देख रहा है। हाँ आठ बार जाना। अच्छा चलो, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया कम से कम चार आना देंगे। हाँ चार आना देंगे, सप्ताह में चार बार जाने का। चलो उठाओ हाथ जो चार आना देने वाले, मैं दे दूं। वो तो बोलता ना, वो चार आना नहीं, चार बार जाना सप्ताह में, ये बोला ना, सप्ताह में चार बार जो सेवा केंद्र से आप जाए हैं वहां पर जाना, वो है चार आना। ठीक है ना, चार आना देंगे ना? चलो चार आना भी नहीं दे तो कोई बात नहीं, एक आना देना। एक आना तो देंगे ना, हाथ उठाओ। सप्ताह में एक बार जाना। हाँ जो भी ब्रह्मा कुमारीज का आश्रम आपके सेंटर के नजदीक है वहां एक बार, प्रॉमिस है ना? जो वादा किया है वो निभाएंगे ना? हाँ एक साल के बाद आपको पूछेंगे। अच्छा इन पंक्तियों के द्वारा पूरा करता हूं। यात्रा में होती है शिकायत मुसाफिर को, होती है ना, इसीलिए तो रेलवे में भी रिजर्वेशन होता है। परंतु तो कुछ तो करो उस लंबी यात्रा के लिए जहां न टिकट न स्टेशन हो।